नमोकार मंत्र 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है, 10 या 8 बार क्यों नहीं? 9 का अंक क्या शुभ माना जाता है या और कोई कारण है? ऐसा है, अगर अपन संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 से गिनती गिने तो 9 संख्या आती है, 9 के बाद फिर 1 और 0, 1 और 1, फिर 1 और 2, 1 और 3, माने 11, 12, 13 रिपीट होते हैं वही। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या 9 ही है। 9 का अंक जो है एक और विशेषता रखता है कि उसमें कितने का भी गुणा किया जाए 9 ही आता है। 9 में 2 का गुणा करिएगा 18 आएगा, उसमें भी 8 और 1 9 है। 27 करिएगा तो 7 और 2 9 है। 36 करिएगा तब भी 6 और 3 9 है। 45 करिए, 54 करिए, 63 करिए, 72 करिएगा, 81 करिएगा, 90 करिएगा तब भी 9 आएगा, 99 करिए तब भी 9 9 18 और फिर 8 और 1 9। वो संख्या ऐसी है जो कि शाश्वत लगती है, कि वो कभी मल्टीपल किए जाने पर भी जो है वो चेंज नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि जितनी देर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है उतनी देर में ही चित्त के स्थिर होने की संभावना भी है, इसलिए हम उतनी देर। और नमोकार पढ़ने का सबका अपना अपना अलग है। अब हमको जो है 15 सेकंड लगते हैं 9 बार नमोकार पढ़ने में, मैंने बोल के पढ़े अगर तो, और अगर मन में पढ़ लोगे तो हो सकता कि 12 ही सेकंड में हो जाए। तो पर उसका जो स्टैंडर्ड है माप वो भी है कि कितनी देर में पढ़ा जाना चाहिए। तो कहते एक आर्या छंद जैसे पढ़ा जाता है वैसा ही, नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियाडम नमो अच्छायाडम नमो लोए सवसाहूनम, ये आर्या छंद। आर्य छंद में है वो नमोकार मंत्र, तो जितनी देर में ये आर्य छंद पढ़ने में अपन को जितनी देर लगी उतने में एक नमोकार। ऐसे 9 नमोकार मंत्र जब हम पढ़ेंगे तब उसमें जो कर्मों की निर्जरा होगी वही वास्तविक है। इस वजह से जो है कम से कम 9 बार रखा गया है। कोई भी स्वाध्याय करते हैं तो उससे पहले स्वाध्याय की समाप्ति पर भी पूजन शुरू करते हैं तब भी 9 बार नमोकार पढ़ते हैं, पूजा के अंत में भी करते हैं, यहां तक कि लघु शंका इत्यादि जाते हैं निवृत्त होते हैं तो भी जो है कहते हैं साधु जनों को 9 बार नमोकार करना चाहिए। सुबह की वंदना के समय भी जो है 9 बार नमोकार, सायंकाल दोपहर में वंदना इत्यादि के समय भी ये क्रिया की जाती है। इस अपेक्षा से ये रखा गया। घर में काम करते हुए पाठ करना चाहिए कि नहीं, या मंदिर में ही? अगर अपन ने पाठ करने का नियम लिया है तो उसको तो एक स्थान पर बैठ के और बढ़िया से सुविधा से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने उस पाठ को चलते चलते कर लिया। हाँ, ये बात अलग है कि चलते चलते भी हम पाठ करें तो कोई हर्जा नहीं है। जैसे हमने आपको नहीं बताया था कि गन्ना खाते समय भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं, और भगवान का नाम लेते समय गन्ना खा सकते कि नहीं? तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? एक को दे दिया कि हाँ, दूसरे को कहा नहीं, तो दोनों बहुत मुश्किल में पड़े कि हमको तो कह दिया था उन्होंने। तो बोले पूछा कैसे था? बोले पूछा हमने ये था कि गन्ना खाते समय भगवान का नाम ले सकते, तो उन्होंने कहा ले सकते। और तुमने क्या पूछा था? बोले हमने ये पूछा था कि भगवान का नाम लेते समय गन्ना खा सकते, तुमने कहा नहीं खा सकते। गन्ना खाते समय तो भगवान का नाम ले सकते, लेकिन भगवान का नाम देते समय गन्ना कैसे खा सकते हैं? ऐसे ही इसमें भी है कि अगर हम अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं और उसमें कोई भजन विस्तार ली या विनती विस्तार ली तो वो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जब विनती का समय है तब उस समय जो है हम ईमानदारी से उस विनती को ही करेंगे, ऐसे नहीं कि उसकी खाना पूर्ति करें। हाँ हाँ, और जब घर के काम कर रहे हैं तो विनती करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई ठीक बात है। इसमें एक और प्रश्न ऊपर मैंने ध्यान नहीं दे पाया, 4 प्रकार के आहार बता दीजिएगा। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, खाद्य स्वाद लेह और पेय। खाद्य वो कहलाते जो चबा के खाए जाते हैं सॉलिड, और पेय जो कहलाते हैं लिक्विड जो पिए जाते हैं, और स्वाद वो कहलाते जिससे मुंह का जायका बनता है, जिसमें सौंफ सुपारी इलायची लौंग आती है, और जो लेह है जो चाट के खाए जाते हैं रबड़ी वगैरह, या सत्तू खाया जाता है। गरीबों के लिए तो सत्तू ही रबड़ी है, बड़े लोगों के लिए रबड़ी है, है कि नहीं? तो वो उनकी सत्तू है। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ये चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए वैसे रात में। अब देखो अपन क्या करते हैं, उसमें से सिर्फ अकेले खाद्य, और खाद्य में से भी कौन से खाद्य, हाँ जो जिसमें आटा वगैरह होता है, जो सकरे वकरे का दोष जिसमें लगता, और बाकी आराम से वो खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं रात में, या कि सिंगाड़े की सेव बना के खा रहे, सिंगार पाक खा लो, है कि नहीं? और भी बहुत आइटम बनने लगे आजकल, तो एक से एक बताते हैं। अब जो तो हमने पुराने जमाने की बताया, कहा चलते ही नहीं होंगे, चलती हैं रोटी तो वही खाने पड़े, चाहे तुम चौथे काल के हो चाहे पांचवें काल के, है? तो ये सब चीजें, लेकिन अपन ने कितना थोड़ा सा छोड़ा, इसका मतलब ये सोचना चाहिए कि अपन ने चार प्रकार के आहार में एक प्रकार का आहार भी नहीं छोड़ा, उसमें कि खाद्य में भी उसमें डिवाइडेशन कर लिया कि खाद्य दो प्रकार के, रात में खाने वाले और दिन में खाने वाले। कितना थोड़ा सा अपना रात्रि भोजन का त्याग है, विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लोगों को त्याग करने में। जब ग्रहण पड़ता है तो भोजन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा लोग मानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इत्यादि पड़ते, विशेष रूप से सूर्य ग्रहण, तो उसमें भोजन नहीं किया जाता है। साइंस के हिसाब से उनका मानना है कि उस समय जो विभिन्न प्रकार की विषाक्त किरणें निकलती हैं, उससे रखा हुआ बनाया हुआ भोजन इत्यादि जो ढका भी रखा है उस पर भी असर पड़ता है, इसलिए उस भोजन को नहीं करते, ऐसा साइंस का कहना। पर जो लोग मानते हैं वही इसको मानते हैं, बाकी तो सब लोग जो है इसको मानते नहीं, खाते पीते, कौन फेक थोड़ी देते हैं, सब सबका धरा रहता है वहां पर, खाते हैं। क्या ग्रहण के पहले बना हुआ भोजन, वही बात है, उसमें कोई मान्यता है अपनी अपनी भैया। क्या समृद्ध और परिपूर्ण मनुष्य हुए बिना जीवन के उच्चतम मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति जीवन के उच्चतम मूल्यों को प्राप्त करेगा वो समृद्ध और परिपूर्ण मनुष्य ही होगा। हमारे जितने तीर्थंकर हैं वे समृद्ध भी थे और अपने आत्मा में परिपूर्ण थे, तब जाकर के उन्होंने अपने जीवन के उच्चतम मूल्यों को प्राप्त किया। जो अभी जो है अपने जीवन में समृद्धि कौन सी भैया, जब बाहरी समृद्धि की चर्चा नहीं है, जो आत्मा में जितना समृद्ध है वो ही सबसे ज्यादा संपन्न है। और परिपूर्ण कौन है, जो कि अपने आत्मकल्याण से युक्त है, उसकी भावना से युक्त है, वही परिपूर्ण है। बाकी सब अपन आधे अधूरे हैं, राग द्वेष में लगे हुए हैं, हैं? ऐसी लो आप समृद्धि से बाहरी ले लो और परिपूर्णता ले लो, ऐसा एकदम नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि कोई गरीब आदमी को मोक्ष नहीं हो सका था, अकेले बड़े आदमी को हुई है, ऐसा कहीं अर्थ नहीं लिखा। लेकिन विपन्नता और संपन्नता बड़ी आंतरिक है। जो व्यक्ति अपने आत्मा का विचार ही नहीं करता वो तो सबसे निर्धन है, गरीब आदमी, हाँ ऐसा समझना चाहिए। धन पैसा से गरीबी अमीरी तो जब संसार की है, यहां तो अपने यहां पर कि जो जितना अपने आत्मा में रुचि रखता वो उतना समृद्ध है, वो उतना परिपूर्ण है। इसलिए जो व्यक्ति परिपूर्ण और समृद्ध है वही व्यक्ति उच्चतम मूल्यों को भी प्राप्त करता है, या जो उच्चतम मूल्यों को प्राप्त करता है वो परिपूर्ण है। रोज भक्तांबर पढ़ते हैं लेकिन शुद्ध नहीं है, उसमें अनजाने भूल हो जाती है, उसके लिए प्रायश्चित बताइए। जानबूझ के अगर बेटे इधर जानबूझ के अगर हम गलती पढ़ते हैं तो बात अलग है, है ना? और अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो किसी जानकार से पहले उसकी शुद्धि, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, कैसेट वगैरह है उनमें से भी कर सकते हैं, या किसी से भी जो है और उसको शुद्ध करवा लो, फिर उसके बाद बोलो। एक चीज और है कि शुद्ध किए बिना और अपन पढ़ने लगते हैं तो फिर मुंह में वैसे ही बन जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है शुद्ध करना। जैसे कि लिखी हुई स्लेट पर और फिर से लिखना बहुत मुश्किल है, इसी तरह से अगर एकदम फ्रेश अपन सही उच्चारण शुरू से ही करें तो उन्हीं तो एक बार जीभ में बन जाता है, तो वैसे हमें हमारे तीन चार जगह हम चूक जाते हैं भक्तांबर में और कई जगह। अब वो बहुत कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता, शक्कर के सा की जगह सलक का सा हो गया, षटकोण का सा हो गया, वा के समय वा की जगह पर बा हो गया, इस तरह से जो है कई उच्चारण अपने हैं। नलिनी दलेशु, अब इसमें भी गलती हो जाती थी, बा मुश्किल सुधरी वो, तो एक बार अगर मुंह में बन गया वो तो मुश्किल है, इसलिए आप पहले शुद्ध करवा लो फिर उसको पढ़ा करें, नहीं तो थोड़ा दोष तो लगता ही है। सिद्धों की अवगाहना जिस शरीर से मोक्ष गए हैं उससे किंचित न्यून शास्त्रों में लिखी है, ये किस अपेक्षा से है? क्या है जो जो गैप है अपने, जैसे ये नाक है, अब इसमें इतना गैप है, इसमें तो ये खत्म हो जाएगा, आंख है उसमें का गैप खत्म हो जाएगा, मुंह का गैप खत्म हो जाएगा, इस तरह से जहां जहां भी गैप है वो सब सॉलिड हो जाता है। तो उतना वन थर्ड लगभग जो है किंचित नून से मतलब वन थर्ड जो है पूरे टोटल शरीर का वो सॉलिड हो जाता है, तो उतना कम हो जाता है, ये है उसका अर्थ। इसलिए उसको किंचित न्यून लिखा है, कुछ कम हो जाता जो ओरिजिनल अपना शरीर है उससे, बादी वादी वाले शरीर में सब कम हो जाएगा। तो अगर मौन लिया है और इशारे से कोई बात करी जाए तो मौन का फल मिलेगा क्या? और क्या कहें हम उसमें, थोड़ा बहुत जरूरी हो तो कर लिया, पर मौन के मायने तो ये था कि मैं अब संसार के किसी भी कार्य में इंटरफियर नहीं करूंगा, मैं उसमें भाग नहीं लूंगा। लेकिन अपन ने इशारा करके एक तरह से भाग तो ले ही लिया उस सारी प्रक्रिया में। मौन के मायने ये था कि मैं उस प्रक्रिया से अब विराम लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अकेले बोलने की ही नहीं बल्कि उन सब कार्यों में जो मेरे से कोई सलाह लेता है या मुझे बताने का मन होता है उन सब से मैं विड्रॉ करता हूं थोड़ी देर के लिए। ऐसा करना चाहिए वास्तव में तो, और फिर जितना चले भैया उतना चलाएं। लोग कहते हैं कि सच्ची भावना भाने से पाषाण भी भगवान हो जाता है और वही पाषाण भावना भाने वाले की कामनाएं पूर्ण करता है, क्या ये सही है क्या? अब आप अपने जीवन में खुद अनुभव करिएगा, हैं? भगवान की मूर्ति काहे की बनाई अपन ने, पाषाण की बनाई, धातु की बनाई, और उसको क्या मान के पूजते हैं भैया? भगवान मान के पूछते हैं कि पथरा मान के पूछते हैं, बताओ? कोई ढका लगा के देखे, पथरा कह के देखे, हैं? तो कैसा लगेगा? कह रही कैसे हो जी आप, पत्थर कहते हो, हमारे भगवान हैं। और भगवान तो छोड़ो, उत्ती दूर कायक हो जाओ, अपने पिताजी को फोटो धरो हुए और रूखों को धक्का दे दे, लात धर दे वो पे, देखें कैसे धरत है, हमारे पिताजी हैं, हमारी मां का फोटो है, ऐसा विचार आ जाता है अकेले उस चित्र में। इसी तरह से जो है क्यों आ जाता, क्योंकि हमारी भावना है, तो भावना से जो है पाषाण भी भगवान बन जाता। और इतना ही नहीं, उस भावना के द्वारा ही कछु मूर्ति हमारो कल्याण नहीं कर दे, मनो हमारी भावनाएं मूर्ति के माध्यम से जो शुद्ध हो जाती सो हमारे सबरे अटके काम बन जाते। स्वपन के कहने में क्या आता कि देखो भगवान के दर्शन से हमारे सब काम सरट गए। लेकिन भगवान ने थोड़ी सलटा दे, बेकिला ने थोड़ी बैठे होते, विस्तृत शिला में अपने आत्मा में लीन है, तुम्हारी दुकान लगा भी थोड़ी बैठे काम करवा बेकिला नहीं थे। अब तुम्हारा हिसाब ही बना उतरे में भैया, इनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या जरूरत, उनसे ज्यादा परेशान कौन उन्हें हुई है। इतने तो एक पिता अपने घर बार को ठीक से नहीं चला पाऊ तो उनको पूरी दुनिया हिसाब किताब रखना पड़ेगा सबका। मगर सब अपने अपने अनुसार फल प्राप्त कर लेती अपनी भावना के अनुसार, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैन दर्शन में पदार्थ से क्या तात्पर्य है? पदेन अर्था पदार्था, जो जानने में आता है उसे पदार्थ कहते हैं, जो ज्ञान का विषय बनता है उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ नौ ही हैं। कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये नौ पदार्थ कहे गए हैं। इसमें सब कुछ आ गया। इस तरह या सात तत्व में दो पुण्य पाप जोड़ दो तो वही नौ पदार्थ हो जाते हैं, और छह द्रव्य हैं, नौ पदार्थ हैं, पांच अस्तिकाएं हैं, सात तत्व हैं, इन सब के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा भी अपने यहां पर आता है। पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य का अर्जन हम किस तरह से कर सकते हैं? सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य होता है वो परंपरा से निर्वाण का कारण है भैया, ये भी जोड़ लेना उसमें, अकेला पुण्य नहीं, सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य है वो निर्वाण का कारण है परंपरा से। मिथ्या दृष्टि का पुण्य परंपरा से निर्वाण का कारण नहीं है, वो संसार के भौतिक सुख मिलने पर उनमें लिप्त हो जाता है, इसलिए वो उसके संसार का कारण हो जाता। और सम्यक दृष्टि जो पुण्य अर्जन करता है वो उस पुण्य के फल में आसक्त नहीं होता, उस पुण्य के फल की आकांक्षा नहीं करता, इसलिए वो और अधिक पुण्य का बंद करके और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त कर लेता। ऐसा क्लियर करके चलिए। अब रही बात पुण्य को अबंध कैसे करें, तो श्रावक के जीवन में तो पाप के अवसर ज्यादा हैं, तब कहते कि कैसे पुण्य करें, तो देव पूजा गुरु पास्ती सास स्वाध्याय संयम तप और त्याग ये छह ही तीने षट कर्माणी दिने दिने। अगर अब जीवन में प्रतिदिन श्रावक इन छह कर्मों को करे तो भारी पुण्य का वो अर्जन करता है, अगर छह न करे तो कहते कि दो तो करे। दो कौन कौन से, तो कहते दान और पूजा। श्रावक के जुम्मे वैसे चहुव्यानम साव्यानम धम्मो, दान पूजा शील और उपवास, ये चार हैं, लेकिन किस जब छह नहीं बने तो चार, चार नहीं तो कम से कम दो, दान और पूजा, इनसे ही उसे पुण्य का अर्जन होता है। उसके लिए यही उपाय, पूजा और दान के लिए तो इतना कभी पढ़िएगा आप लोग, पढ़ते नहीं, 35 श्रावकाचार हैं श्रावकों के लिए, 35, मूलाचार तो एक ही है, ज्यादा से ज्यादा अहंकार धर्मामृत मिलता है, लेकिन श्रावकाचार तो 35 हैं। श्रावक को इस तरह से पुण्य अर्जन के लिए बहुत से दान और पूजा के बारे में कहा गया, तो कृपा करके ऐसा करिए।
जिसको हम अपना मानते हैं, मन में गलत भावना भी उसके प्रति नहीं रखते, फिर भी हमें उसकी आंखों के आगे नीचा देखना पड़ता है, इसका क्या कारण है, कौन से पाप का उदय है? देखो भैया, सब चीजों में किसी पूर्व पाप का ही उदय हो ऐसा नियम नहीं है, हमारे वर्तमान का भी तो है, हैं? हमारा वर्तमान पुरुषार्थ भी उसमें काम आता है, हम इसलिए इसको ऐसा विचार नहीं करें। हम अच्छा कर रहे हैं दूसरे के साथ, और अगर वो हमारे साथ अच्छा नहीं करता है तो वो उसका अपना राग द्वेष है, वो उसकी अपनी सोच है, अपन क्या कर सकते इसमें, इसलिए फिर जो है दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जिससे अपन बहुत जिसके प्रति अच्छा रखते हैं, भावना भी अच्छी रखते हैं, तो वो ही अपन को नीचा दिखाने की कई बार कोशिश करता है। अब इसको क्या कहें अपन, थोड़ा मन को शांति दे लेते कि कोई पुराना कर्म होगा इसलिए ऐसा, मन की शांति के लिए है, पर ऐसा कोई वो नहीं कि हमारे ही कर्म का उदय हो, उसके भी तो राग द्वेष लगे हुए हैं, वो राग द्वेष के वशीभूत होकर के और ऐसा करता है। जैसे अब पार्षद भगवान पे कमट ने उपसर किया तो उनके कौन से पाप का उदय था, कमट के पाप का उदय है तो वो करत रहो और उसका फिर भी उसको भोगना पड़ा, पार्षद को क्या बिगड़ो उनको बताओ आप। तो इसी तरह कई लोग अपने प्रति बुरा व्यवहार करते तो अपन होने लगता है कि अपने कछु कर्म को उदय हुई है, सुजी अपने संगी है सो बुरा व्यवहार कर रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसका अपना कषाय भाव भी तो है, अपना तो अपन पाप को उदय जब कहा है जब अपन उसके किसी कार्य से दुखी हो गए, और अपन दुखी नहीं हो गए, अपन ने कोई ऐसा किया ही नहीं है जिससे कि वो अपन को अपने साथ ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार, सज्जन के साथ में दुर्जन अगर दुर्व्यवहार करे तो का सज्जन की सज्जनता पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे, नहीं दुर्जन की दुर्जनता प्रकट हो गई कि सज्जन आदमी तक से जो है उसने दुर्व्यवहार किया, इससे मालूम पड़ता है कि वो दुर्जन है, सज्जन तो फिर भी सज्जन है। ऐसा भी विचार, वर्तमान का ही विचार करना जी, सब चीजों पे कर्म पुराने कर्म पे संतोष जरूर अपने को मिलता है कि भैया हुई है अपने कछु कर्म को उदय हुई है, इनसे काके हुए अपन, लेकिन उसमें सामने वाले की कषाय भाव भी रहता कई बार जो है, ऐसा विचार करके अपन को संतोष धारण तो करना चाहिए।
मछली के कान होते कि नहीं होते, अब कोशिश ने करियो देख भी की मर जे नहीं दुआ तुम्हारा कोशिश करने लग के कान कहां है, उतनी देर में मरा ही जाएगी, मनो होते हैं उसके कान हैं, संगी पंचेंद्री होती हैं, मछली भी कोई कोई असंगी भी होती हैं, पर संगी भी हैं, उनके मन भी होता है और पांचों इंद्रियां तो होती ही होती हैं, इसलिए कान भी होते हैं, इसके भी कान होते हैं तुम्हारे सर्प के, विज्ञान तो मानता है कि सर्प चार इंद्री है, अपने यहां पर ऐसा नहीं, अपने यहां तो पांच इंद्री माना गया, कान ऐसा है कि जैसे अपने बने हैं ना ऐसे भले ही नहीं रहते पर कान का सिस्टम तो रहता है, उसको अंदर का जैसे सुनाई पड़ता है। कथन की साध्वाद शैली और कथन की नए शैली में अंतर क्या है, दोनों एक ही है भैया। कथन करने की स्याद का मतलब होता है सापेक्ष और वाद का मतलब होता है कथन, सापेक्ष रूप से वस्तु के कथन करने की शैली का नाम साद्वाद है, उसी को नए कहते हैं, सापेक्ष रूप से कथन करना ही नए है, वक्तु क्या कहते हैं अभिप्राय नया, वक्ता का जो अभिप्राय है वही नए है, उसके कथन करने का जो सापेक्ष ढंग है वही नए है, वही साद्वाद कहलाता है। ये दोनों किस परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं,
वस्तु स्वरूप को समझने के लिए प्रयुक्त होते हैं और संसार में भी अपन इसी का उपयोग करते हैं दोनों का। जैसे ये मेरे पिता हैं, क्यों हैं पिता? क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, इस अपेक्षा से मेरे पिता हैं। लेकिन जो बाजू में खड़ा हुआ है भाई, वो कहते नहीं नहीं ये पिता नहीं है, ये तो मेरे भाई हैं। क्यों भाई हैं आपके? मैं इनका भाई हूं। और कोई आकर के कहता कि नहीं नहीं कैसे आपके भाई हैं, कैसे आपके पिता हैं, हमारे तो ताऊ हैं ताऊ। तो ठीक है भैया, आपके ताऊ भी ठीक हैं, वो किसी की अपेक्षा पिता भी ठीक हैं, किसी के भाई भी ठीक हैं, सब हैं वो। ये सापेक्ष रूप से ही आप कथन कर सकते हैं। एक व्यक्ति सब होते हुए भी जब कहा जाएगा तो अलग अलग सापेक्ष ही कहना पड़ेगा। सर्वथा नहीं कह सकते कि ये पिता ही है और कुछ नहीं, ऐसा कह सकते क्या? नहीं, वो पिता है अगर तो किसी ना किसी के बेटे तो होंगे ही, डेफिनेट, ऐसे तो संभव ही नहीं है। एक कुछ नहीं हो सकता, सब है। अनंत धर्मों से युक्त है वस्तु, विपरीत धर्मों से युक्त है। उसके एक एक धर्म को कथन करने की शैली, सापेक्ष रूप से कथन करने की शैली को नए या साद्वाद कहते हैं। ये सभी जगह जो है प्रयुक्त होती है। कल के दो प्रश्न मेरे से, एक प्रश्न का उत्तर तो गलत हो गया था, मैं उसे सुधारता हूं। वैक्रियक शरीर धातु और उपधातु से युक्त होता है क्या, ऐसा प्रश्न आया था। और मैंने कह दिया था कि उपधातु नहीं होती पर धातुएं तो होती हैं, पर वो मेरा कहना ठीक नहीं था। मैं उसे सुधारता हूं कि वैक्रियक शरीर में कोई धातु और उपधातु इत्यादि नहीं होती है। यह प्रश्न का उत्तर सही है, कल जो मैंने दिया था वो मेरी भूल थी। और दूसरी बात, किसी ने पूछा था कि तीन प्रकार के दान लिखे गए हैं सागर धर्मामृत में, वहां कहीं पर भी और सकल दत्ति का उल्लेख नहीं आया, ये किस ग्रंथ में मिलता है? तो सागर धर्मामृत में ही चौथे दान का भेद, उसको अन्वय दत्ति कहते हैं, सकल दत्ति न कहके वैसा भेद दिया है। महापुराण में भी है और चारित्र सार में भी लिखा हुआ है। ये बात कल की छूट गई थी, तो आज जो है अनंत नाम वाली कविता सुनाई दी जाए। बाकी ये प्रश्न जो है, एक दो प्रश्न बचे, अब क्या करें? हमारी नहीं है ये, गुना वालों की है ये कविता। लोग समझते कि हमारी है, पर हमें अच्छी लगती तो हम सुनाते हैं, भजन जैसे ही है वो। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंडी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य।
मेरा आहार दान देने का भाव है, बहुत अच्छी बात। किसी के घर में आहार दान देने चली जाऊं, उसी की सामग्री दे दूं, तो पुण्य किसको लगेगा? देने वाले को लगेगा और किसको लगेगा? आपने आहार दान के भाव किए हैं और आहार दिया है, भैया ये व्यवहार है कि जब हमारे चौका लगे सो तो हमारे आ जाइए समाव दे दियो, और जब तुम्हारे लगे सो हम आ जाए सो तुम्हारे दे जाए, ये व्यवहार है। इस पे भारी चर्चा हुई थी, सन 84 में चर्चा हुई थी आचार्य श्री के पास में, और कई महाराज जी कहते कि अपनो लेके नहीं दाओ तो कछु दान ने कहलाओ। इस पे फिर बाद में निर्णय ये हुआ, पंडित बैठे थे बड़े बड़े, उन सब के साथ में विचार हुआ कि ऐसे नहीं बनेगा, ये तो लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में अब कछु का रोटी लेके जेओ का दूसरे के घर है, देवी रोटी दे रहे महाराज बताओ, पानी लेके जेओ का? कहते नहीं भाई ऐसा नहीं चलता, जब आपके यहां पर चौका लगा है और हम पहुंच गए और आपसे हमने पूछ लिया कि आपका दे दें, ठीक है उठा करके दे दिया, जब हमारे त्याग सोते ही हमारा दे लियो तुम, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते। और या फिर जो है कई लोग अब आए जल्दी जल्दी तो ट्रेन से उतरे और आहार देना है तो आहार देंगे, लेकिन फिर बाद में आहार दान स्वरूप कोई भी राशि इत्यादि दे देंगे, गुल्लक में डाल दी, आहार दान दे लिया, क्या करेंगे आप? अब चावल लेके नहीं जा पाए मंदिर तो क्या करते हैं अपन? बाहर बास में गए और मंदिर पड़ गए, चावल तो ले ही नहीं आए थे घर से, तो भैया दर्शन कर लो, बिना चावलों के न करो चाहिए वैसे, लेकिन दर्शन कर लो, गुल्लक में चावल के बारे पैसा डाल देंगे, या कि नरियल चढ़ाना है तो उतने पैसे डाल देंगे, क्या करें? खाली हाथ नहीं आना चाहिए, मानो धरे धरे कहां फिरे अब ब्याहों में जा रहे। तो इसलिए इसमें कोई हर्जा नहीं है, आहार दान के आपके भाव हैं, आपने दे दिया जो वहां सुविधा थी। अब हमारे तो लेके इतनो आ जाऊ, लेने है नहीं है, रोज को मालूम है, मैंने सब हाथ में इतने लाए रहता, उनके सब भरवाओ पहले और फिर बाद में हाथ धुआओ, फिर जो पानी चल रहा सुबह फिर भी दे, उतने तो हो जाता हमारा आधे से ज्यादा आहार। हाँ जितने भी अपने हाथ खाली कर मैं पटक दें, अब भाई इतो लेके आओ, लेने है नहीं है कछू। हाँ जो महाराज जी जो चीज ले पे उनको ले जाओ, हम जमाना नहीं कर रहे, मगर अपन ने जान ली कि भैया जी चीज लेते ही नहीं है और अपन ले जा रहे। अच्छा वो चौका बारे लेते नहीं है, तुम्हारा काय से ले वो कि तुम्हारा दूध धर ले, हमने तुम्हारे एक ग्रास धारे से तुम्हारा जो दूध धर ली, ऐसे धर रहे वो चौका बारो नहीं, आप खुद विचार करो इस चीज का। हाँ ये बात अलग है कि हम कोई ना कोई चीज हाथ में लेकर के जावे, लेकिन लेकर के जावे और वो देने के योग्य है और दी ही जावे, इसमें बहुत अंतराय होता हमने देख लिया। जी बाहर आहार से लेके आउट हैं, यही में अंतराय हो, माता जी आता जी को तो भारी हो, हमारे से तो ना डरा थे, माता जी से तो आती नहीं है जी बहने बहने, सुनने भर गई माता जी, लियो माता जी हमारा थोड़ा रस ले लो, अब वो रस कैसो है सो कचू भरोसा नहीं है, ले आए हैं दे लू। तो इसलिए हमारा ये सब बात करने का हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कोई अपने हाथ में कोई सामान लेके आया और कदाचित वो महाराज जी ने नहीं लिया तो क्या करेगा? उसी चौके का कुछ ना कुछ तो देगा, एक बात। और कदाचित कोई व्यक्ति जो है और सामान लेके नहीं आया और उसी चौके का देगा कि नहीं देगा, दोनों स्थितियों में समानता है। हम लेके आए थे वो नहीं लाओ, चौके को देने पड़ो,
और या हम लेके ही नहीं आए थे, हमारी सुविधा ही नहीं बन पाई, हमने उसी का दे दिया, तब भी दोनों स्थितियों में। और फिर बाद में अगर आपको लगे कि भैया हमें तो दान देना था, सो हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना चाहिए, सो गुल्लक इत्यादि में अपने दान स्वरूप डाल दिया, उसमें कोई हर्जा नहीं है। इस तरह से नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी, कोई दे ही नहीं पाएगा दान। इस तरह हमारे पास तो आने वाले अधिकांश लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है, बाहर से आए, जल्दी जल्दी आए और उन्हें अपने कपड़े रख के ही आते हैं, वो ट्रेन से उतरे सीधे। और हाँ, कोई भी दिन आप खुद देख रहे होंगे इतने दिन में कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन जो है पीछे और 10 लोग बाहर से नए आने के एक आध दो फैमिली और आहार खोने गई हो। अब रोज को काम है और जितने आगे बढ़ जाने उतने ही और बढ़ते ही चले जाने का, तुम्हारे नहीं आओ तो दूसरी जगह। अच्छा तो हम देखा कि का बना के ले आऊते पैसे, लो चाहिए बना के ले आऊते पैसे के जी धर ले चले हम उतरे महाराज को बना कर ले चाहिए, ऐसा कर होगा नहीं तो फिर कैसे, वहीं आएंगे वहीं पर जो है आहार देंगे, जैसी सुविधा बनेगी वैसा दे देंगे। ऐसा मतलब देखो ये प्रेम भाव है परस्पर श्रावक का, एक दूसरे से व्यवहार है कि भैया ठीक है जब हमारे यहां आएंगे तो हम भी चौका इत्यादि लगाएंगे। और सबसे अच्छा तो ये है कि अपन कोई ना कोई चीज का उस दिन त्याग करें, बस दान भी करें और त्याग भी करना चाहिए। आहार महाराज को आहार दिए हैं तो कोई ना कोई चीज का हम त्याग करेंगे क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है, ऐसा कर लो, बस एडजस्ट करना चाहिए भाई। हमने सबके सामने भगवान के दर्शन, अच्छा हमें सबके सामने भगवान के दर्शन करने में शर्म क्यों आती बताओ, इनको एक भगवान करे तो वादे करे जी, अपने होते ही करत रहे अकेले में यदि अकेले होते हैं तो अच्छे से दर्शन कर लेते हैं, शर्म किस कर्म के उदय से आती है भैया, कोई कर्म का उदय इसमें नहीं है, ये हमारे अपने मन का एक भ्रम है जो हमने कभी बचपन से या किसी उससे पाल लिया है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, सन 86 की है, हम कटनी में थे, एक बिटी आई MBBS कर रही, अच्छी चर्चा करी उसने, धर्म का भी उसको ज्ञान है, और फिर जहां आहार देने की चर्चा आई तो कहने लगी महाराज आज तक जो है हमने आहार नहीं दिए और हमको बहुत भय लगता है, शर्म भी लगती है साड़ी पहनने में। हमने कहा ऐसी क्या बात है, तो बोले कि हमारे अंदर तो बहुत भय बहुत लगता है। हमने कहा याद करो कुछ हुआ था क्या, कह रहे हाँ याद क्या करना, वो तो हुआ ही था जब हम 10-11 साल के थे तो हमको माँ ने साड़ी पहना दी और हम गए और वो साड़ी ठीक से जो है बंधी नहीं थी, बंधी नहीं तो चौकी में जाकर के वो है वो थोड़ी सी खुलने लगी साड़ी, तो बहुत जो है एकदम भयभीत हो गई वो। और तब से उसके अंदर इंप्रेशन बना, आज जितने 20-25 साल की हो गई तब भी उसके अंदर की कहीं ऐसा ना हो कि आहार देते समय और इस तरह की स्थिति बन जाए, वो भय उसके अंदर। भैया अब उस भय को कैसे दूर करें, हमने कहा कोई नहीं दूर कर सकता, कल तुम तो पहन करके आओ देखेंगे क्या होता है, आहार तो हमें लेना है। और बस दूसरे दिन सहज रूप से जो है थोड़ा थोड़ा भय लगता रहा पर पूरे जो है आहार दे लिए, हमेशा के लिए भय छूट गया। भैया मुझे आपको इस घटना से ये सलाह देनी कि ऐसी कई चीजें हमारे अंदर, किसी कर्म का उदय नहीं, हमारे अंदर ऐसा भ्रम बैठ जाता है कई बार कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही लगता है कि लोगों के सामने पता नहीं लोग मुझे देख रहे होंगे, ये कहलाता है सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाए जैसे फोटो कॉन्शियस हो जाते हैं, फोटो खिंच रही है तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे वो फोटो बिगड़ जाएगी, सेल्फ फोटो कॉन्शियस हो गए वो, ऐसे सेल्फ कॉन्शियस। कई लोग चले जाते हैं रस्ते से और सीधे सीधे चले जा रहे, उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग हमें देख रहे हैं तो उनकी चाल दबा जाती है। हाँ ये सेल्फ कॉन्शियस है ना, इसी तरह ये है कि मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और उस समय ऐसा लगा कि जैसे सब लोग हम ही को देख रहे हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ये इसको छोड़िएगा, इस तरह का ये भ्रम है आपका। और सबके बीच में दर्शन करने की कोशिश करिएगा, सबके बीच भी हम अपने चित्त को लगा के दर्शन करेंगे, देखें कैसा होता है, बड़े आसानी से जो है दर्शन। और नहीं तो फिर कोई ऐसा भी नहीं, हर्जा भी नहीं है, जब ज्यादा भीड़ ना हो तब आप मंदिर अपना टाइम निश्चित कर लें कि भाई ज्यादा भीड़ नहीं रहती। कई लोग रहते हैं जिनको दूसरे ढंग का कि बहुत शोरगुल होता तो मन नहीं लगता, तो भैया जब कोई नहीं रहता साढ़े दस बज गए, ग्यारह बज गए, एक आध दो लोग आते जाते मंदिर में तब चले गए, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह से जब लोग पहुंचते ही उस समय दर्शन वर्शन करके बढ़िया से आ गए, तो वैसा कर सकते हैं, एडजस्ट करिएगा, लेकिन मन के भ्रम को निकालिएगा। इसमें किसी कर्म वर्म का उदय नहीं है, हर एक चीज को कर्माश्रित मत मानिएगा। यदि पार्टी वगैरह में रात में भोजन ना करें और घर में खा लें तो भी क्या पुण्य मिलेगा क्या? वाह भैया जी, तो आपने हमारी बात को शायद गलत समझ करके ऐसा प्रश्न लिख दिया। जो भी हो, मैं ऐसा ब्लेमिंग भी नहीं करूंगा आपके ऊपर, लेकिन मैं अक्सर ऐसा कहता हूं, इस बात को मेरे कहने के ढंग को आप पकड़ करके बैठ जाएंगे तो शायद ऐसे ही प्रश्न उठेगा आपके मन में। मेरे कहने का ढंग क्या है? मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं कि भागम भाग करके और दिन चूंकि डूब रहा है, किसी होटल में घुस के और दिन दिन में भोजन कर लेने से बेटर है कि शाम को रात में 8 बजे पहुंच के अपने मां के हाथ का बना भोजन चौके में बैठ के कर लेना। इसका मतलब यह नहीं कि मैं रात्रि भोजन का समर्थन कर रहा हूं, मैं आपके होटल के भोजन का निषेध कर रहा हूं कि दिन दिन में 6 बजे होटल में, क्योंकि अब रात हो रही घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो होटल में घुस के और दिन में कर लिया, कर लिया हम तो दिन में कर लिया, हमारा रात्रि भोजन को त्याग और होटल में कर लो, इस जो है घरे रात में मां को बनाओ कर लेती शुद्ध, तो वो भी फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या लिया? इसका मतलब ये नहीं लेना कि मैं रात्रि भोजन आपको करने की प्रेरणा दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कृपा करके होटल का भोजन ना करें दिन में, दिन में भी, रात में तो ठीक ही है। और जब मैं ये कहता हूं कि देखो भैया रात में सामूहिक रूप से भोजन नहीं करना, भले ही घर में चुपचाप अपने बैठ के कमरा में अगर न हो पावे, भूख लगा रहे तो खा लेना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात्रि भोजन का समर्थन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्टी में समूह में अपने समाज की इज्जत में डुबो, जाहे कह रहे हम आपसे, आपको नहीं मालूम इसके बारे में, ऐसी भाषा मेरी हो गई बोलते हैं, बोलने में ऐसी भाषा नहीं है मेरी, लेकिन इस प्रश्न का ऐसे ही उत्तर दे रहा हूं। इंदौर की घटना है, इंदौर में उनके जो बारह समाज के बहुत बड़े कोई क्या थे वो, हाँ उनके धर्म गुरु बौरा समाज के, वो आए और उनके सानिध्य में इंदौर में बहुत बड़ा भोज होना था पूरी बौरा समाज का, मांसाहार जिसमें टनों मांस बनना था, बताइए सामूहिक भोज मांसाहार का। तब सारी जैन समाज तो बिल्कुल बौखला गई, पाटोदी जी के नेतृत्व में और 5-7 लोग पूरे जैन समाज का रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके पास में गए, क्या हुआ पानी आ गया? इतने से मैं आप उठने लगे आप, बताओ महाराज कह रहे कि ना चतुर्मास को रोक ले, पानी बरसन लगे जबान लगे खुद चतुर्मास में तो पानी बरसे भाई हम आपसे क्या कह रहे थे, है याद आपको? एक घटना सुना रहे थे हम कि ऐसा हुआ कि बौरा समाज के धर्म गुरु की तरफ से ये डिक्लेयर हुआ कि मांसाहार का सामूहिक भोज होगा, तो जैन समाज के लोग पहुंचे थे और मंच से उनसे निवेदन किया कि कृपा करके आप अलग अलग इंडिविजुअल खाले में तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप समूह में नहीं खाएं, इतना सारा पकेगा और ये सब पूरे वैष्णव स्कूल के अंदर वो व्यवस्था की गई थी। तो उनने थोड़ी देर विचार किया और उसी मंच से जो है ये डिक्लेयर किया कि हम जो है अपना इतना बड़ा 8 दिन के बाद होने वाला प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, हम इस सामूहिक भोज नहीं देंगे, लेकिन जो लोग जैन समाज के मेरे मंच पर आकर के इस बात को कह रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि उनका जो नियम है रात्रि में भोजन नहीं करने का, वे भी यहां नियम लेके जाएं कि समूह में रात में भोजन नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो इनके सबके मुंह इतने से रह गए थे, 5 जन उतर गए, कहने हमारी 5 जनों की कह सकत कि हम नकर हैं मानू, बाकी समाज की नहीं कह सकत, जे समाज के नेता मंच से जड़ डिक्लेयर नहीं कर सके कि हम पूरे समाज की तरफ से कहते हैं कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे, समूह में नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल कर सकते अपने घर में कमरे में बैठ करके कोने में और हमें भूख लगाएगी तो हम खा लेंगे, लेकिन हम समूह में बैठ के रात में नहीं करेंगे, हमारी इज्जत का सवाल, हमारी समाज की इज्जत का सवाल। लेकिन आज तो बहने लोग भी रात में बड़े शौक से खाने लगे, मां लोग भी जाकर के वहां पर शौक से टेबल कुर्सी बैठ के खाने लगी, भैया अब तो जो है कुछ भी नहीं रहा शेष संस्कृति के नाम पर, सिवाय जो है फैशन परस्ती और क्या कहें उसको, और ज्यादा शब्द मेरे मुंह में आते ही नहीं है वो पैसे वाले, आप क्या कहें, और लेकिन हमको नहीं अच्छा नहीं लगता, पर आपको अच्छा लगता है तो क्या
खाओ।
तो इसलिए जो है ये जो हम कह रहे हैं, आपने जो लिखा कि पार्टी आदि में रात में भोजन ना करो, घर में खा लें तो पुण्य होगा, पुण्य तो किसी में भी नहीं है, लेकिन सामूहिक पाप का बंद होगा रात्रि में खाने से, ये ध्यान रखना। और जब सामूहिक पाप फलता है तब पूरी बस गिर जाती, बस की बस, पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, पूरा एक साथ भूकंप में सब समाप्त हो जाते हैं, ये सामूहिक पाप का उदय है, अगर आप समझना चाहो तो। ये सब इस तरह से सब एक साथ बैठ के और सब ने समूह में बैठ के रात में खाना खाया, सामूहिक पाप किया है, फलित होगा वो, देर नहीं लगेगी उसमें, और सबने समर्थन किया उसका एक दूसरे का, भले ही आपने नमकीन नहीं खाओ, मीठा खाओ, खाया तो है आपने। अब आप विचार कर लो, हम नियम कुछ नहीं बनाते समाज के, समाज के हर व्यक्ति को ऐसा नियम ले लेना चाहिए कि हम रात्रि में कोई हमें मिठाई भी खिलाने के लिए बुलाएगा, पानी पिलाने के लिए, तो हम पानी, हम घर पानी पीते होंगे, पियेंगे, हम रात में किसी के यहां जाके पानी तक नहीं पियेंगे, समूह में नहीं पियेंगे, समूह में मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग, इतना भी नहीं ले सकते। हमारी रात्रि भोजन त्याग हमारी शाख है, पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, ये हमारे जैनों की शाख है। आज अगर आगरे के अंदर चले जाते थे और स्टेशन पर कहते थे इक्के वाले से 5:30 बजे, बाबा जल्दी चलाना, हां जैन साहब, फौरन कहता था हां जैन साहब, कैसे मालूम पड़ा कि हम जैन साहब हैं, कहते 5:30 बजे और इक्का जल्दी चलाने के लिए कहने वाला जैन ही हो सकता है, क्योंकि उसे रात की चिंता है कि रात में नहीं खाए। बताइए आप, ये स्टेशन पर साख थी आगरे के अंदर, मैं कब गया था मालूम, 71 में, तब की घटना है ये। वहां जैसे ही जो है कहा कि इक्के वाले से कि वो धर्मशाला में आगरे की ओर जल्दी से पहुंचाओ, 5:30 बज रहे हैं, हां जैन साहब, उसके मुंह से फौरन निकला हां जैन साहब। तो भैया अभी भी मौका है, आप इस तरह के कुछ काम करें तो अच्छा है। जब हम आचार्य श्री से पौड़ीबंद में आशीर्वाद ले रहे थे तो रात में रास्ते में सर्व का रास्ते से निकलना किस बात का परिचायक है, कोई बाधा थी वो निकल गई आसानी से। हां स्वप्न में जो है मुझे एक बार जो है एक के बाद एक चार सर्प दिखे, हां एक आया और मेरे सामने ठहर करके निकल गया, दूसरा आया वो भी थोड़ा सा ऐसे ठहर के निकल गया, दो छोटे छोटे से निकले मेरे साथ, महीने भर के अंदर दो बड़ी बड़ी विपत्तियां और दो छोटी छोटी विपत्तियां, लेकिन आसानी से निकल गई, ये सूचक है इस बात का। विपत्तियां मुश्किलें, विपत्ति, विपत्ति आने वाली थी वो आसानी से निकल गई, सर्प जो है सामने से निकल गया, मतलब कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी वो आसानी से, आप क्योंकि तीर्थ यात्रा से लौट के आ रहे थे या जा रहे थे, वो आसानी से कट गया कर्म, इस तरह भी हो सकता है। हमारे घर में झगड़ा होता है, सबके घर में होता है, उसमें क्या, कोई किसी की नहीं सुनता, सब लोग का ऐसे ही है और बरकत बिल्कुल नहीं होती, जितना पैसा आता खर्च हो जाता, पता नहीं कहां चला जाता। इस झगड़े से मुक्ति कैसे पाएं, हमको एक छतरपुर के व्यक्ति थे वो बताते थे कि महाराज हमें आपकी बात पे विश्वास होने लगा, बोले हमारे यहां पर साल भर की इनकम जो है 4 लाख रुपए है, लेकिन 3.5 लाख रुपए हर साल दवाई में खर्च हो जाते। बताइए आप, क्योंकि सब बातों का सुख है, कहीं कोई हमको परेशानी नहीं है, लेकिन हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि हम जितना कमाते हैं उसमें से 3/4 और 3/4 से ज्यादा और सिर्फ दवाई में, कोई ना कोई ऐसा निमित्त आएगा कि 1-1.5 लाख रुपए के ऑपरेशन पूरी फैमिली में किसी ना किसी का होगा और 1.5 लाख रुपए उसमें सीधा जाए गड्ढे में। बताइए आप भैया, इसके लिए तो अपन यही मानते हैं कि कोई बहुत पूर्व कर्म का निकाचित कर्म है जो अपना फल दे के जाता है, हमारे वर्तमान पुरुषार्थ के बावजूद भी वो अपना फल दे के जाता है, इसलिए इसको काटने का एक ही उपाय है, जिन बिंब का दर्शन। आप तो जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन, ज्यादा हो तो उनके अभिषेक और पूजन का नियम ले रहे, मैं आपको मैंने वो तो नहीं दे सकता, गारंटी तो नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कहता हूं कि मन में शांति हो जाएगी, आपके कर्म कटेंगे तो जरूर से सब बढ़िया हो जाता है। विपत्तियां आती हैं तो आर्थिक रूप से आती हैं या कि पारिवारिक किसी रूप से आती हैं, मानसिक रूप से आती हैं, भैया असाता किस रूप में फलित होगी कह नहीं सकते, पर असाता को काटने का एक ही उपाय है, जिनेंद्र भगवान का पूजन, अभिषेक और दर्शन। इतना करिएगा आप, घबराइए मत। सांझ के द्वारे रात आई है, ये वाली या कि मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, ये सुना दीजिएगा। ये दोनों पगडंडी की आपने याद तो दिला दिया, ये बहुत पहले लिखा था। सांझ के द्वारे रात आई है, स्वागत करो, दीप जलाओ, देखो तो ये रोशनी का संदेशा लाई है। अपन तो सोचते हैं कि रात आ गई और बड़े घबरा जाते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि सांझ के द्वारे रात आई है, स्वागत करो, दीप जलाओ, देखो तो ये रोशनी का संदेशा लाई है। इसी तरह जिंदगी के द्वार पर मौत आई है, स्वागत करो, डोली सजाओ, देखो तो ये अपने घर वापस लौटने का संदेशा लाई है। एक ऐसा मरण जिसमें कि हम अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर ले, सिद्ध हो जावे, तो ऐसे मरण का तो स्वागत ही करना चाहिए। वो मरण हमें भयभीत नहीं करता है, वो मरण तो हमें इस संसार से मुक्त कर देता है, निर्वाण जिसको अपन कहते हैं, तो उसी का प्रतीक है ये। बस दूसरी वाली लंबी है तो वो हमको पूरी याद नहीं है। हम 7 साल के हैं और हम ऊधम बहुत करते हैं, हमको आशीर्वाद दें कि हम ऊधम नहीं करें। अरे वाह, जल्दी तो आ, जल्दी। कौन कहा है? वो अपने मन से लिख रहा है कि हम थोड़ा ऊधम ज्यादा करते हैं, आशीर्वाद दे दो कि ऊधम कम करें। ये आ रहा है क्या दौड़ करके? अरे वाह, थोड़ा ऊधम ज्यादा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब ऊधम नहीं करना है, ठीक। अब ये नियम ले लो है, कितनी बार नमोकार पढ़ोगे? 9 बार बन जाएगा। अच्छा पढ़ो, क्यों सुनो तो इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ, इधर सुनो, सुनो, इधर आओ, ठहरो तो ठहरो, इधर आओ। तुमने नमोस्तु नहीं करा महाराज को, भूल गए थे? करो, हाँ ये ठीक। उसको 2 बार लाभ दे दिया हमने, ऐसा क्या कैसा सोच रहे हैं आप? प्रार्थना और याचना में क्या अंतर है? तो ये देखो, प्रार्थना में लगता ऐसा है कि जैसे हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। सामान्य रूप से प्रार्थना जो है वो भगवान से मांगने का नाम है सामान्य रूप से, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रार्थना जो है भगवान के सामने अपने दोषों का निवेदन करना और भगवान की प्रशंसा करना, यह प्रार्थना है। इसी को स्तुति भी कहते हैं, स्तवन भी कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रार्थना के मायने याचना नहीं है, पर सामान्य रूप से प्रचलित अर्थ क्या है प्रार्थना का, कि भैया हम आपसे प्रार्थना करते कि हमारा ये काम बना दो आप, हम आपसे प्रार्थना करते कि हमारा ऐसा नुकसान मत करो आप, मतलब वो एक तरह की दीनहीन होकर के और एक तरह की याचना ही है। पर प्रार्थना और याचना में फर्क है, याचना में हमारी कोई ना कोई आकांक्षा छिपी हुई है, लेकिन प्रार्थना में हमारी आकांक्षा नहीं है बल्कि थैंक्स है, अहोभाव है कि भगवान हम कैसे आपकी स्तुति करें, कैसे हम आपकी वंदना करें, आप जो है गुणों में हमसे बहुत अधिक हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपाव। और अब इसलिए तो जब मैं अपावन हूं तो अचरण आयो शरण जी, मैं इस विनती को बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि 2 ही लाइन में पूरी विनती हो गई वैसे, और बाकी तो सब यही का विस्तार है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, इसलिए चरण आयो शरण जी, आपके चरणों में आया हूं, तब क्या करो आपसे हम कछु मांगे का नहीं, हम तो आपको याद दिलाते हैं कि यो विरद आप निहार स्वामी मैट जामन पर, आपकी प्रशंसा, आपकी विरदावली जिसको कहते हैं, यो विरद आप निहार स्वामी, आप ही जानो अपनी, आपकी प्रशंसा तो इसमें है कि आप जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं, इसलिए मैं आपके पास अपने जन्म मरण से मुक्त होने के लिए आया। समंत भद्र स्वामी प्रार्थना करते हैं तो पहले कहते कि भगवान आप बीतरागी हो, हमारी प्रशंसा, हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर के हमें कुछ दोगे नहीं, और अगर हम आपकी प्रशंसा नहीं भी करें तो आप हमसे नाराज होकर हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं करोगे। तो भगवान कहते कि जब हम तुम्हारा न कछु बिगाड़ करेंगे न तुम्हें कुछ देंगे तो आय काय को, ऐसा पूछ लिया अगर भगवान पूछते हो कि तो आय काय को हो। कहते आप वीतरागी हो, तो वीतरागी हो तो आप हमारे पास आए क्यों, हमारी वीतरागता को जानते हो फिर भी। कहते भगवान क्या करें, पुनः तु चित्तम दुरितान जनेभ्या, आपके गुणों का चिंतन करने से मेरा मन पवित्र होता है, इसलिए आपके पास आया हूं, आपसे मांगने मांगने कुछ नहीं आया। आपका सानिध्य मेरे मन को निर्मल करता है, आपकी स्तुति जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा मन निर्मल हो जाता है, इसलिए मैं आया हूं। तो अपने यहां पर प्रार्थना इसी अर्थ में है, और याचना तो सामान्य रूप से जो है वो कोई वस्तु किसी से आकांक्षा करना चाहना उस अर्थ में है। मां बड़ी होती है कि बेटा, कहीं पढ़ लिया आपने ये किताब तो पढ़ी आपने, आचार्य श्री ने जो है इस चीज का अपने प्रवचन में एक जगह उल्लेख किया है कि बड़ी चर्चा चलती है कि ये छोटे हैं वे बड़े हैं। कहते भैया अगर देखा जावे तो अलग अलग दृष्टि है, जो आज एक महीने का है वो दादाजी से भी बड़ा है, क्योंकि दादाजी जल्दी चले गए, वो तो बहुत दिन तक रहे हैं। और फिर कहते दूसरा कि मां बड़ी की बेटा, तो कहते कि दो ही बराबरी के हैं, जब तक बेटा नहीं हुआ था तब तक उसको कौन मां कहता था, इस बेटे के होने से ही फिर वो कहने लगे कि ये मां है, कल तक तो वो किसी की बिटिया थी, अब वो खुद मां हो गई, बेटे ने आकर के उसको मां कहलवाना शुरू किया। तो बताओ कौन का जन्म पहले हुआ, बेटे का कि मां का, बेटा पहले जन्मा फिर बाद में जो है मां कहलाने लगी वो, तो मां छोटी हो गई कि नहीं हो गई कि ऐसा। ये सिर्फ एक अपने यहां पर जिसको अपन कहते हैं ना दृष्टिकोण है, सापेक्ष कथन की शैली है, स्यादवाद की शैली है, जैसा कथन करना चाहो वैसा कथन कर सकते हैं उस दृष्टि से। बहनों और माताओं को भगवान के गर्भगृह में जाने चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गर्भगृह किसे कहते हैं मालूम, या गर्भालय किसे कहते हैं, जहां पर की भगवान की वेदी बनी हुई है और उसके चारों तरफ जो स्थान छोड़ दिया जाता है, घेर दिया जाता है, वो कहलाता है गर्भालय, या उसी को कहते हैं गर्भगृह। और फिर उसके बाहर बहुत बड़ा स्थान होता है जहां से अपन दर्शन करते हैं, और उसके बाहर फिर पैर वगैरह धोने का स्थान, ऐसे तीन स्थान होते हैं, सभा मंडप और उसके बाहर उसका नाम मैं भूल जाता हूं, और गर्भगृह, सभा मंडप और एक और जहां अपन पैर धोते हैं, ऐसे तीन पोर्शन होते हैं मंदिर के, उसमें से जहां वेदी पर भगवान विराजे हैं वो गर्भगृह कहलाता, उसकी शुद्धि विशेष होती है, वहां पर तो जो शुद्ध वस्त्र पहने हैं वे ही जा सकते हैं पहली बार। लेकिन कहीं कहीं पर मूर्ति में विशेष अतिशय होता है तो वहां शुद्धि विशेष आवश्यक होती है। हम कोलारस गए, वहां पर कांच से बंद है, 9 खड़गासन मूर्तियां हैं इस ऐसे पूरे दीवार में, एक तरफ छोड़ के तीन तरफ दीवार में खड़गासन, वहां पर कांच से बंद करके बाहर लिखा है कि सावधान, बिना शुद्धि के भीतर प्रवेश करने पर यदि कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, ऐसा लिखा है। एक व्यक्ति हमारे सामने सामने जो है बिना 16 कपड़े पहने भीतर जाने लगा, वो पुजारी पता नहीं कहां से और हाथ पकड़ के उसने भीतर थोड़ा ही तो घुसा था और बाहर उसने कर दिया, कहने क्या करना, मरना है क्या? वहां के जो रक्षक देव हैं वे कई बार पसंद नहीं करते हैं कि कोई इस तरह अशुद्ध घुसे। शाहपुर के मंदिर में तीनों वेदियों पर बाहर लिखा है कि बहने लोग मां लोग इसमें भीतर ना जाए, क्यों, क्या कोई अपवित्र है क्या वो? नहीं, लेकिन वहां का जो देव है रक्षक वो नहीं पसंद करता कि कोई उसके, वहां पर झाड़ू भी लगाते हैं तो माली जी नहीं लगाते झाड़ू, वहां पर अपने में से कोई 16 कपड़े पहने वो झाड़ू लगाएगा उस गर्भगृह के भीतर। कई बार इस तरह उस मूर्ति की विशेष पवित्रता की सुरक्षा के लिए अपन ऐसे जो है अपवित्र अवस्था में ना जाए, उसका मुख्य उद्देश्य ये है। तो इसलिए कहीं कहीं अगर ऐसा लिखा रहे कि मां और बहनें ना जाएं, तो उसमें अपनी हीनता नहीं मानना चाहिए, कह रहे जी हमें इतना पवित्र मान रहे कि हम भीतर तक नहीं जा सकते, हमें तो भगवान को जन्म दाओ तो
वहां बता रहे कि भीतर में हम ही भगवान और हम जी भी नहीं जा सकते। ऐसा मन में जो है हमेशा इन चीजों का लोग अलग ही अर्थ ले लेते हैं और ऐसा अर्थ लेकर के अपन जो है और अपने को कमजोर या कि फील करने लगते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल नीचा गिराने की और ये तो बड़ा मतभेद करने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, तो उस अनुशासन को अपन को उसी अर्थ में लेना चाहिए। तो जहां जैसा हो, पर मुख्य बात तो यह है कि गर्भगृह में शुद्ध वस्त्र पहन करके ही प्रवेश किया जाए, विशेष रूप से देखा जाए तो मंदिर के ही वस्त्र पहन के प्रवेश किए, ईमानदारी से वही शुद्ध है। बाकी तो अपन ये वस्त्र अपने घर गृहस्थी के काम में भी उपयोग में ले लेते हैं, पर वो जो मंदिर के 16 के वस्त्र हैं वो बिल्कुल अलग है। तो उन वस्त्रों में ही गर्भगृह के अंदर जाया जाए तो सारी बात आसानी से सॉल्व हो सकती है। आरती क्यों की जाती है? आरती का कोई सीमित समय है क्या? भैया अपने भावों का कोई सीमित समय नहीं होता। जब हमारे भाव हुए तो हमने भगवान की पूजा कर ली और दीपक से आरती उतार ली। वो दीपक से आरती उतारना पूजा का एक अंग ही तो है, और क्या उसमें विशेष है? तो आरती क्यों करनी चाहिए? कल के दिन आप ये पूछने लगोगे कि पूजा क्यों करनी चाहिए, अभिषेक क्यों ना चाहिए करना चाहिए, मगर जा भी तो पूछोगे भोजन काय करे चाहिए रोज रोज। कर लो एक दिन आप, फिर महीना भर बाद फिर करें, अब शुरू ही तो करो तब संजय क्यों काय हम कर रहे हैं। नहीं ऐसा ऐसा हर एक चीज में अपन क्यों लगा देवे तो फिर ठीक नहीं है। ये चीजें हमारे मन को निर्मल करने वाली हैं, अलग अलग आलंबन है, कोई पूजा के माध्यम से, कोई स्वाध्याय के माध्यम से, कोई अभिषेक के, कोई आरती में किसी का मन लगता है तो बढ़िया भजन गा करके आरती कर लेते हैं। कैसे बने, जैसे बने तैसे भगवान के गुणगान करें जिससे कि हमारा मन निर्मल हो, इसलिए आरती करते हैं। कोई सीमित समय नहीं है भैया, लेकिन मंदिर का जो अनुशासन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर में कब से कब तक आरती का समय निर्धारित है। नहीं तो आप अपनी आरती गा बजा रहे हो और तो दूसरे व्यक्ति स्वाध्याय विस्तार रहे हैं तो उसको परेशानी हो जाए। तो अपनी आरती समेट लो भैया, 8 बजे तक, 8 बजे से वचन का हो थे तो कि पहले निपटा लो। नहीं तो आप ये कहो कि महाराज जी ने तो गई थी कि जब चाहे कर सकत, सुबह 12 बजे मालिक को बुला रहे कि खोलियों के बाद हमें आरती करने, तो आप जी करो तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में ऐसा नहीं, मंदिर का एक डिसिप्लिन है, मंदिर का एक अनुशासन है, उसके अनुसार करो, लेकिन अपनी भावनाओं के अनुसार करना चाहिए कि अपनी भावना बनी उस समय पर। पूजा का कोई सीमित समय है, वही बात इसमें आ गई, कोई सीमित समय नहीं भैया। सांप्रदायिक आश्रयों के भेद क्या हैं और इसी प्रकार इरियापद आश्रयों के भेद हैं तो मुझे बताइएगा। अच्छा आप कुछ स्वाध्याय वाध्याय कर रहे हैं क्या? आश्रय दो ही प्रकार का होता है। आश्रय किसे कहते हैं? कर्मों के आने का नाम आश्रय है। निरंतर कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को स्थापित करते रहते हैं, निरंतर बनते रहते हैं, तो मन वचन काय की हलन चलन से और निरंतर कर्म वर्गनाएं आती हैं और बंध को प्राप्त होती रहती हैं, उसको आश्रय कहते हैं, आने का नाम आश्रय। आश्रय दो प्रकार से होता है, एक कषाय से युक्त जीव के आश्रय होता, उसे कहते हैं सांप्राय। सांप्राय इति को अर्थ है कषाय, सांप्राय का अर्थ है कषाय। तो कषाय के साथ होने वाले आश्रय को सांप्रायिक आश्रय कहते हो, कषाय के अभाव में भी मन वचन काय की क्रिया के द्वारा जो आश्रय होता उसे इरियापद आश्रय कहते। कहते दोनों में अंतर क्या है? तो कहते कषाय के साथ जो आश्रय होता उसमें स्थिति अनुभाग भी पड़ता है, कितने समय तक बंधेगा वो और कितना फल देगा। इरियापद आश्रय में ऐसा नहीं है, वो तो कर्म आता है और स्थिति अनुभाग के बिना और तुरंत ही चला जाता, जैसे कि अपन के पनाल हो उसमें और टीन के ऊपर पानी आया गिरा और नीचे बह के चला गया, रुका ही नहीं वो। तो इसी तरह से इरियापद आश्रय में कर्म आते हैं, रुकते नहीं हैं और उसी समय निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, इसको इरियापद आश्रय कहते हैं। हम जैसे माहौल में जाते हैं हमारा मन वैसा ही होता है। जैसे धार्मिक माहौल में रहते हैं तो हमारा मन धार्मिक हो जाता, शादी विवाह वगैरह के माहौल में जाते हैं तो वैसा मन हो जाता। कुछ मार्गदर्शन करें, अपन यही तो समझ रहे हैं रोज कि संसार के बीच रहने के अवसर बहुत हैं, धर्म के अवसर बहुत थोड़े हैं। अब क्या करें? 24 घंटे तो कोई मंदिर में बैठा नहीं रह सकता, 24 घंटे तो कोई महाराज के पास रह नहीं सकता, 24 घंटे तो कोई जिनवाणी नहीं बांध सकता। बताइए सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य कोई 24 घंटे कैसे प्राप्त कर सकता?
लेकिन कर सकता है। कैसे? हम उनको अपने मन में धारण करें, हम कहीं भी रहें लेकिन हमें ये स्मरण बना रहे कि भगवान ने, गुरुजनों ने, जिनवाणी ने हमें क्या उपदेश दिया है। हम अपने सांसारिक कार्य के बीच भी उनको नहीं भूलें, यही उनका सानिध्य है। उस माहौल में जाकर के इतना काम जरूर करना है कि हम पूरी तरह से उसमें इंडल्ज ना हो जाएं, रचपच ना जाएं। हम हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि मुझे अपने परिणाम हमेशा संभाले रहना है। बहुत अधिक सुख के अवसर पर मुझे हर्ष ज्यादा कर लूंगा तो अभिमान वशी हर्ष होता है, अभिमान से भी कर्म बंद होते हैं, और या कि मैं किसी दुख के अवसर पर विषाद कर लेता हूं तो संक्लेश परिणाम होते हैं, उससे भी मेरे कर्मों का ही बंद होता। ऐसा थोड़ा भाव बना रहे और ऐसे थोड़े से अपने जो संस्कार हैं उन संस्कारों को भी अपने को प्रबल बनाना चाहिए। ज्यादा उन चीजों में अब हम और विशेष क्या कहें, ज्यादा रचना पचना अलग ही समझ में आता है कि आप ब्याह में तो गए हैं किसी के, लेकिन एक औपचारिक तावश गए हैं और उसमें आप अटेंड भी कर रहे हैं पर आप ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये तो अपने आप समझ में आता है। आप उसमें से भी अच्छी चीजों में, आज आहार के बाद ही चर्चा हो रही थी कि ठीक है अगर कोई रात में हमको भोजन के लिए बुलाता है या कि दिन में भी हमें बुफे सिस्टम से खाने के लिए आमंत्रित करता है कि जी रखा है सब खाना और आप अपने हाथ से खाओ, और हमें लगता है कि ये हमारी संस्कृति के योग्य नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम जाएं लेकिन अपने विचार की और 10-20 लोगों से कहें कि ये तो जनता नहीं है, और वे 10-20 लोग वहां खड़े हो जाएं और कहें कि भाई मैं, हम सब लोग जो है आपके यहां आए तो हैं लेकिन हम ऐसे नहीं खाएंगे, हमें तो आप नीचे जो है लाओ, हम अपने हाथ से थाली लगाए लेते हैं और उस पर बैठ के और आराम से खाएंगे, ऐसे चलते फिरते जूते चप्पल पहने हुए, और ये खाना हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम शांत भाव से बैठ के भगवान का स्मरण करके और आहार भोजन ग्रहण करेंगे। क्या हम ऐसा कोई उदाहरण वहां जाके प्रस्तुत नहीं कर सकते? थोड़ा सा दिक्कत होगी पर ये सब साहस के काम। रात में भी कोई बुलाता है चले जाओ, मैं कहता हूं मत जाओ, ऐसा नहीं, जाओ लेकिन खाऊंगा मैं, दूर खड़े रहूं और अपने और अपने विचार के 25 को और फोड़ लेंगे ऐसे आकृति अपन बाउट के घर, लेकिन हम समर्थन नहीं करेंगे उसका, ताकि उसको फील तो हो कि ये हमारे यहां आए तो थे लेकिन हमने इनको रात में खिलाने की कोशिश की। कई घर ऐसे हैं अभी भी जहां पर कि कलेक्टर भी आधे घंटे लेट पहुंचे थे उनके बुलाने पर, समय से नहीं पहुंचे थे तो उनको सिर्फ उन्होंने दूध और पानी पिला दिया था। उन्होंने कहा कि ये आप हमारा अपमान कर रहे हैं, आपने हमने भोजन पे बुलाया और आपने भोजन न करवा के दूध पानी अकेला पिलाया, मजाक में उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि अपमान तो आपने हमारा किया, हमने आपको 6 बजे तक बुलाया था, आप हमारे यहां रात में 6:30 बजे क्यों आए जब हमने आपको 6 बजे का कहा था। देखिए ऐसे फैमिली भी हैं, और दूसरे तरह के उदाहरण भी हैं कि वो कहते हैं कि 6 बजे से आपके आने तक ऐसा लिखा रहता कार्ड में, तो ऐसे लोगों के यहां पर जाएं लेकिन वहां पर कुछ भी उसमें समर्थन नहीं करना सबसे बड़ा विरोध है। कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं, समर्थन ही नहीं करूंगा बस। मैं तो कहता हूं इतनी चर्चा करते हैं, इतना हल्ला करते हैं कि दहेज का विरोध करो रे, फलाना करो रे, और नियम ले रे, हाथ उठा के हम दहेज में लें और उनमें कहीं हम न करें, कहा होने वाले हो इसे? हम तो ये कहते हैं कि जिसके यहां पर दहेज के साथ में मैरिज हो रही, पता कर लो कि ये दहेज लेके मैरिज कर रहा है, उसके यहां जाओ सब मिल करके 25-50 बैठ जाओ शांति से, और फिर बाद में बीच में उठ के कि चूंकि इन्होंने दहेज लिया है इसलिए हम इस शादी का बहिष्कार करते हैं और वॉकआउट बाहर आ गए कह करके। अब उसके पे क्या बीतेगी, उस पे सोचेगा वो? ऐसा 25-50 डब्बे जहां शुरू हो जाए तो ये सब चीजें अपने आप ठंडी पड़ जाएंगी, इन पे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर ऐसे माहौल में अपन जाते हैं तो उस माहौल को अपन जल्दी से स्वीकार क्यों कर लेते हैं? उस माहौल में अगर लगता है कि ये माहौल योग्य नहीं है तो उस माहौल में क्यों हम रचपच जाए? यही तो धार्मिक दृष्टिकोण है। मैं जो है नीति न्याय पूर्वक ही किसी कार्य में शामिल होऊंगा, मैं ऐसे आंख मीच के हरेक काम में शामिल नहीं होऊंगा, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। पर मन का तो यही है कि जहां आप बैठते हैं अपन, इसलिए तो लिखा है कि संगति का बहुत असर होता भैया, इसलिए संगति ऐसी करना जिससे कि अपने परिणाम अच्छे रहें, ऐसी संगति नहीं करना। अपन कमजोर लोग हैं, संगति का बहुत लोग ऐसे हैं जिन पे असर नहीं पड़ता, उनकी बात ठीक है, लेकिन अपना संगति का तो असर पड़ता। जैसे लोगों के बीच रहेंगे और वैसे ही अपने परिणाम होने लगते हैं, धर्म के क्षेत्र में अलग हो जाते हैं और किसी और दूसरे क्षेत्र में चले जाएं तो वहां के जैसे हो जाते हैं। आजकल घरों में नल पर थैली बांध देते हैं पर जीवाणु जो है वो डालते नहीं, कई बार थैली सूख जाती, कई बार क्या सूख ही जाती है, बताने पर अच्छा बुरा बोलने लगते। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अरे भैया, लोगों की चिंता काय कर रहे, अपने घर में बंदी हुई तो ध्यान से सावधानी रखो, दूसरे के घर में बंदी तो कहा सबको सुधारने को ठेका ना होगा अपन ने। सीधी सीधी बात है, उसमें ज्यादा जो है ऐसे जब जब कोई आपसे सलाह मांगेगी तो आप उसको सलाह कैसे दे रहे हैं, समझ में नहीं आता। ये बहुत जल्दी सलाह देना शुरू कर देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब वो पूछे कि क्या हमने थैली बांध रखी है, इसमें दोष तो लगता होगा, हाँ भैया दोष तो लगता है, आपको उसे पानी भरने के बाद तुरंत छोड़ करके और सुखा करके फिर बांधनी चाहिए। अब कई बार टंकी में पानी भरा और उसमें तो निरंतर पानी फिल लेना है और बंधी हुई है, ऐसा क्यों? आप अलग से छन्नी रख लो ना, बाजू में टांग दो कि जब भी कोई इसमें से पानी ले छन्ना लगाए और छान करके और उसकी जीवाणी ठीक ठीक स्थान पर डाले और फिर बात। हर 48 मिनट में पानी पीने से पहले भावना का छन्ना तो लगानी चाहिए। छन्ना से जीव छनते हैं कि नहीं छनते ये तो छोड़ो, लेकिन मैं तो परिणाम यही करूं कि मैं बचाने का भाव रख रहा हूं। जीव मेरे बचाने से बच नहीं सकते थे, इतने सूक्ष्म जीव हैं, उनका जन्म मरण होता ही रहता है, हम बचाएं तो और नहीं बचाएं तो। लेकिन बचाने के भाव से हम बच जाते हैं, मारने के भाव से जीव मरे चाहे न बचे हम तो मर ही जाते। इसलिए वहां भावों का छन्ना है मुख्य रूप से, वो अपन को विचार करना चाहिए उस चीज का अपने जीवन के लिए, दूसरे के हिसाब से नहीं। मैंने बहुत सी खाने और सेवन में आने वाली लगाने वाली चीजों का त्याग किया, किंतु मैंने किसी गुरु के सामने नहीं किया, भगवान के सामने किया। तो क्या गुरु के सामने भी कर सकते हैं? करने में तो कोई हर्जा नहीं है। इसमें थोड़ा लाभ ही हो जाता है कि अपन से कोई टूट फूट हो जाए तो निवेदन कर सकते, आलोचना कर सकते हैं अपने दोषों की कि महाराज हमसे जो है ये नियम तो ले लिया था हमने, पर कमी हो गई, हमसे ये गलती दोष लग गया, शिथिलता आ गई, तो वो उसमें कुछ प्रायश्चित इत्यादि से मन प्रसन्न हो जाता। नहीं तो कई बार क्या है, भगवान के सामने ले लिया कुछ, उसमें टूट फूट हो गई तो अब किससे प्रायश्चित, अपने मन से ले लेंगे क्या? तो अपने मन से ले भी लो तो मन नहीं भरता, किसी से कहने का मन जरूर होता। इसलिए उसमें लिखा है अरंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहू सख्यम, अप सख्यम, पर सख्यम। पांच लोगों की साक्षी पूर्वक ले, अरंत की साक्षी, सिद्ध की साक्षी और साधु की साक्षी, साधु में आचार्य उपाध्याय साधु सब आ गए, तो पंच परमेष्ठी की साक्षी और अप सख्यम पर सख्यम बताओ। आत्मा की साक्षी पूर्वक तो व्रत लेनी है, पर की साक्षी भी अपने घर बार में बता दो कि हमने जो नियम दे लो भैया, कभी भूल चूक हो जाओ तो आप कनक टोक दिए या संभाल लियो, हम भूल सकते हैं, संस्कार वश जो है। इसलिए शायद पांच पांच की साक्षी रखी है कि हम अपने अकेले आत्म साक्षी पूर्वक ले लें तो कई बार विस्मृत हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, तो ये सब संभालने वाले लोग हैं, तो इसलिए ऐसा कर लेना चाहिए, कोई हर्जा नहीं। धनिया पत्ती में कितनी हरी का दोष लगता है? जितनी धनिया पत्ती खाओगे उतनी लगेगा क्या जितनी पत्ती उतनी। अब हरी तो एक ही है, ये तो पान वगैरह के साथ में है कि पान में जो है बहुत हिंसा होती, तो अपन ने किसी ने कह दिया भैया 36 हरी खाओ उतना दोष लगत। अब 36 नहीं, अगर लिखो और ज्यादा गिनती पढ़ो, लिखो ज्यादा होती लिखो तो कुछ 100 खाओ उतना लग, उसको 36 मां से निकल गई तो प्रचलित हो गई कि 36 हरी के बराबर। अब कोई निजा थोड़ी हिसाब लगाओ कि जितनी में 36 हरी में जितने दोष लगे तो कई में पान में लगाते हैं, सो कचू पर ठीक है तो करो नहीं लीजिए। मगर कहने का है कि इतना दोष लगेगा, इतने में तो तुम 36 प्रकार की सब्जी खा लो, जितना पान खा रहे क्या आवश्यकता है अकेले मुंह का जायका बनाने के लिए। ये बात अलग है कि औषधि के लिए कोई पान की पत्ती बता रहे तो बात अलग है, लेकिन ये तो अकेले चूना और ये मिला करके तो पान मुंह के जायके के लिए है और पाचक भी होता है पान, ऐसा नहीं समझना, वो अलग है, वो एज ए मेडिसिन है। तो ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी जैसे धनिया पत्ती है, पुदीना है, ये सब पत्तीदार सब्जियां हैं, इनमें जीव राशि अधिक मात्रा में उत्पन्न होती, तो अपन सावधानी रखते कि भैया चतुर्मास चतुर्मास में नहीं खाएंगे, सूखी ऋतु में खाएंगे और जरा सोध बीन के खाएंगे, नहीं तो ज्यादा हिंसा लगेगी, बस इतना ही है। लकीर के फकीर भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। जो है जो व्यक्ति आत्महत्या करता है ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती क्या? उसकी आत्मा भटकती रहती होगी। अरे आप बहुत चिंतित हो, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो संकलेश पूर्वक मरण को प्राप्त हो रहा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आयु तो उसकी पूर्ण हो जाती है, वहीं के वहीं आयु के निषेक तो समाप्त ही हो जाते। हमने कई बार इस चीज को कहा, अपन को समझ लेना चाहिए कि आयु तो जो अपन बांध के लाए थे वो वहीं पूरी खत्म करना पड़ेगी, उसको आप कहीं और ले नहीं जा सकते, यहीं की यहीं पूरी खत्म होगी, और जब तक नई आयु नहीं बन जाएगी तब तक वो जीव कहीं जा नहीं सकता, नई आयु बंधेगी तब जाएगा और जहां की बंधेगी वहां जाएगा। भटकने भटकने का ऐसा नहीं है कि कोई बिना शरीर के और भटक जाए, जहां ये चर्चा आती कि बिना देह के मेरे प्राण भटक ना जाएं, तो बिना देह के प्राण ना भटक जाएं वहां पर क्या आशय है? वहां पर इस औदारिक देह की अपेक्षा, मोटी देह की अपेक्षा से व्यंतर इत्यादि जो है उनकी बड़ी सूक्ष्म देह है, अपन को कहां दिखाई देती, यहां वहां वे भटकते ही तो मालूम पड़ते हैं, तो उनको हम भटकना कह देते, पर वो भी एक पर्याय है, वो भी तो देवगति है। तो कोई व्यक्ति मरण के समय अगर संकलेश करेगा तो देव दुर्गति भी हो जाती, कई बार व्यंतर इत्यादि देव बन जाते, उसी को अपन लोग भटकना भटकना कह देते कि भैया भी तो व्यंतर बन गए, भटक गए वे, ऐसा कह देते हैं। पर उसमें ऐसा नहीं समझना कि आयु पूर्ण नहीं हुई, आयु पूर्ण हो जाती है। ग्रह दशाओं का मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जरूर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? या नहीं पड़ता तो है, और इनके प्रभावों से किन्हीं प्रयासों से बचा जा सकता, एक ही उपाय है, भगवान की पूजा भक्ति। संसार की जो जन्म मरण की तकलीफ है उस तक से बचने का एक ही उपाय है कि भगवान की पूजा भक्ति श्रद्धा पूर्वक, सच्ची श्रद्धा के साथ जो है अगर अपन और पूजा भक्ति करते हैं, अपने आचरण को निर्मल रखते हैं, तो फिर इन सब चीजों से। वर्णी जी जब ईसरी में चले गए और इस तरफ आने का मना कर दिया कि अब नहीं आ पाएंगे, तो कई लोग जो है उनसे आशीर्वाद मंगाते थे कि वर्णी जी से आशीर्वाद ले पाइयो, तो एक व्यक्ति ने कहा कि वर्णी जी आशीर्वाद दे दो, तो वर्णी जी ने आखिरी आखिरी में अब अशक्त हो गए थे, तो कहने भैया देखो चार त्रिमान हो गए तो हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, हमारे आशीर्वाद के बिना भी उसका कल्याण हो जाएगा, और चारित्रहीन हो गए तो हमारा आशीर्वाद फल है ने कछु फायदा नहीं होने, ऐसा जवाब दे देते थे। तो भैया क्या अर्थ हुआ इसका कि हम अपने आचरण को पवित्र रखें तो जो आने वाली विपत्तियां हैं, जो सुख दुख हैं, वे भी जो है वो कमती हो जाते हैं, या कि हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है तो वे उतने ही होने पर भी वे दुख सुख हमें कमती मालूम पड़ने लगते। इसलिए ये ग्रह दशाएं इत्यादि जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं उनसे उनका प्रभाव जैसा कम बढ़, क्योंकि हम अभी संसारी हैं, हर चीज का प्रभाव पड़ता। देखो कोई जोर से अपन से कह देवे तो प्रभाव पड़ता कि नहीं, और कोई प्रेम से कहे तो प्रभाव पड़ता कि नहीं, सब बातों का तो प्रभाव पड़ता जब तक शरीर है। और आचार्य श्री तो कहते कि जिसके पास परिग्रह है सो नौ ग्रहों को प्रभाव, दसवें परिग्रह है, तो जिसने अभी जो है आसक्ति रख रखी है उस पर तो हर चीज का प्रभाव, जो अनाशक्त है संसार से अलिप्त है उस पर फिर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, पर अपने ऊपर तो पड़ता, हर चीज का प्रभाव पड़ता। इसलिए उससे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान की ठाट बाट से पूजा करो, अपना आचरण अच्छा करो, नियम व्रत नियम के साथ में रहो, फिर देखें कैसे पड़ता प्रभाव। तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखे जाते? अब अपन चिनारी में करते हैं, अपन गए दर्शन आदिनाथ के ऊपर निकल गया महावीर स्वामी, तो बड़ी दिक्कत नहीं हुई जो होते स्वपन में सबके निर्धारित कर गए। हाँ, ऐसे जवाब दे रहे हैं हम आपको। चिन्ह वैसे जवाब सही है, कहने का ढंग अलग है। अलग अलग तीर्थंकरों के पहचान के लिए भगवान के जन्माभिषेक के समय इंद्र उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह देखता है उसे ही उन तीर्थंकर के लिए निर्धारित कर देता, और कोई उनके जीवन से पूर्व से उस चिन्ह का कोई ज्यादा संबंध नहीं होता है। वो एक 1008 अच्छे लक्षण होते हैं भगवान के शरीर में, उनमें से जो है हर एक के दाहिने पैर के अंगूठे में कोई ना कोई लक्षण तो होगा, उसी को जो है निर्धारित कर दिया। बाद में जब भगवान सिद्ध बन जाते हैं तो हमारे पास क्या उपाय है? विदेश क्षेत्र में तो ये है कि हमेशा तीर्थंकर बने रहते, सो वहां पर कोई आवश्यकता नहीं। अब यहां तो भरत क्षेत्र में थोड़े समय के लिए तीर्थंकर रहेंगे, अब हमें 24 तीर्थंकर की अगर देखें तो बाहर से सबकी मूर्ति एक सी है, सबकी वितराग अवस्था है, कहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग जो है अपने पूजा भक्ति के वश अब इन सबको अलग अलग पूजेंगे तो अलग भाव लगते हैं। प्रवचन सारिपि में लिखा कि एक साथ 24 भगवान को प्रणाम और पृथक पृथक पत्येगम पत्येगम, मैं प्रत्येक को अलग अलग भी प्रणाम करता हूं, उसमें अपने भाव अच्छे बन जाते। इसलिए तो वो चिन्ह भी जो है निर्धारित कर दिए कि शेर का चिन्ह देख करके जो है ये महावीर भगवान है। तो महावीर भगवान ने जल्दी से अपन को जो महावीर भगवान के दिए चैतन्य स्तुति आती तो अपने आप फूट पड़ती है। ये आदिनाथ भगवान है, इन्होंने ऐसी तपस्या करी थी 6 महीने तक तो आहार ही को नहीं उठे, फिर उठे सो फिर अंतराय होता रहा। देखो तो 1 साल तक इनको आहार नहीं हुआ और कैसे जो है इन्होंने तपस्या करी। आदिनाथ का उतना सा वो बैल का चिन्ह, आदिनाथ के बारे में सारी कथा कह के चला गया। सांप का चिन्ह देख करके भारी पार्श्वनाथ भगवान ने कमेट में भारी उपसर्ग करो, इनने हमेशा क्षमा धारण करी। ये कितना लाभप्रद हो गया वो चिन्ह, जबकि उसका कोई महत्व विशेष नहीं है, वो तो भगवान के 1008 लक्षणों में से एक शुभ लक्षण ही है। तो इस तरह ये चिन्ह अपन लोगों की सुविधा के लिए निर्धारित किए गए भैया, हर एक भगवान के होते हैं, विदेश क्षेत्र में आवश्यक नहीं होते। पूजा के बर्तन ठीक कौन से माने जाएं, चांदी के, स्टील के, पीतल के, तांबे के, भैया लोहे के छोड़ के और बाकी सब ठीक है। और लोहा कहो चाहे स्टील कहो बात तो एक ही है, लेकिन अब प्रचलन वो ही है, है? अब तो उसकी वो बनने लगी, क्या कहते स्टील आई की तुम्हारे क्या कहलाती पांडुकशिला, काय से अगर चांदी की बनवाओ तो चोरी को डर, पीतल की उत्ती अच्छी नहीं देखने में आती, गिलट की कमती बनती है और गिलट की में ऐसे लगत कि चांदी की आए सो चुराए जा रहे खमो का उखो अपने अवसर पर चोरी को, तो जो भी इसमें तो कुल मिला के वो परंपरा में चल गया है। सिंहासन भी जो है स्टील के बनने लगे हैं, क्या करें, पीतल के सिंहासन भी काम चल सकता भैया, पर उस पर पालिश आलिश ज्यादा नहीं करवाओ नहीं तो भी सोने जैसे लगन लगा सो फिर एक झगड़ा नाओ। बड़ी दिक्कत है आज के समय में जो है, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टील के बर्तन में नहीं। चांदी की माला फेरने से लाभ मिलता है, माला तो चाहे जौन सी फेरो अगर अच्छे मन से फेरो तो लाभ ही लाभ है, और अगर खोटे मन से फेरो तो फिर तो शांतिनाथाय नमः रामस्य मृत्यु भवेत्। जी जो रावण महाराज हते तो वे ऐसे ही माला फेरते थे कि शांतिनाथ की तो माला फेर रहे, और मन में भाव का है कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो जाए तो बताओ उनकी माला कछु काम करी, उनकी कछु नहीं काम करो, बेहद उन्हीं के मरण होगा। तो इसलिए माला चाहे तुम चांदी की फेरो, चाहे हाथ से फेरो, चाहे कैसे करो, लेकिन भाव अपने अच्छे हो। आपके कॉलेज के एग्जाम की कुछ बातें बताइएगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछिएगा तो क्या करिएगा, उसमें बड़ी आत्म प्रशंसा जैसी मालूम पड़ने लगती है, बड़ा संकोच लगता है, पर कभी कभी लगता है कि शायद आपको उससे कोई रास्ता मिल जाए, पर फिर भी इतना ही है कि कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, आ जाती थी, जिनमें कि अपन को अपना धर्म बनाए रखने में ही अपनी शान है। ऐसा कई बार अवसर आया, हमें याद है एक घटना हम आपको सुना देते हैं। हम लोग 4-5 लोगों का एक ग्रुप था और वो मैंने अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे कि भैया ये प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं आलोक मैं, तो हम लोग एक दिन क्या हुआ कि पीरियड फ्री था, आज के जमाने में ये सब चीजों के दिन लद गए, मगर फिर भी याद आ जाता कभी कभी जब कोई ऐसा पूछता है। ऐसी बहुत घटनाएं, उसमें से एक घटना मैं आपको बताऊं, तो वो डिपार्टमेंट के बाहर ये समझिएगा कि ये डिपार्टमेंट भीतर है मान लो, और ये ऐसे ही बना हुआ इतना ही ऐसे बैठने के लिए, फिर आगे जो है वो गार्डन है, गार्डन के बाद फेंसिंग है, फेंसिंग के बाद फिर थोड़ा सा पोर्शन खाली पड़ा रहता था, उसके बाद फिर रोड, रोड पे से लोग आते जाते इतने पीछे, ऐसा है सिचुएशन ऐसी। तो इस जो डिपार्टमेंट का कंपाउंड है उसके भीतर तो कोई इस तरह गपशप तो कर ही नहीं सकता, फेंसिंग के बाहर खड़े हो जाते अगर कुछ चर्चा करनी, पेड़ लगे उसके बाहर, उन पेड़ के नीचे खड़े थे और सामने रोड है और पहले ही डिपार्टमेंट था, तो कोई भी बस आती थी, चाहे गर्ल्स बस आए चाहे बॉयज की बस आए, वो सब वहीं आकर के और पहले डिपार्टमेंट के वहां रुकना है, फिर सब अपने अपने निकल के अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, इस तरह से था वो। तो हम लोग जो है उस दिन फ्री पीरियड था 2:15 बजे का, तो बाहर जाके हम पांच लोग खड़े और आराम से बात कर रहे थे, उसी समय जो है बहनों की बस आई और उसमें से सब निकल के अपने अपने डिपार्टमेंट जाने लगे। हमारे साहब ने जो है वो थर्ड फ्लोर से ऊपर से देख लिया कि ये सब जा रहे हैं और ये सब हमारे स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो तफरी करने खड़े हुए, उनको देखने के लिए खड़े हुए, ऐसा उनके मन में आया। तो उन्होंने ट्यून से बुलाया हमको कि बुला ला, कौन बुला रहा है? तो उनका सतनारायण साहब हेड साहब बुला रहे हैं। अरे हम लोग बहुत खुश, हमने कहा साहब बुला रहे हैं आज तो, अपनी अब तो मजा आ गई, आज तो बड़े खुश हुए, कौन उनसे तो मिलने की बहुत मुश्किल होती है, वो अपने आप से बुला रहे हैं। तो बड़े बड़े खुश खुश ऊपर चढ़ते हुए और जैसे ही कमरे में घुसे और उनने जो लेक्चर देना शुरू किया, तो वो लेक्चर तो सब भूल भाल गया, अंग्रेजी में भारी उनने आधे घंटे तक, हम लोग ने बहुत क्लैरिफिकेशन दिया कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कहां मानने वाले, और जब अंग्रेजी वाला बहुत गुस्सा में आए तो एक आध बात हिंदी में कहता है, और हिंदी वाले को बहुत गुस्सा आए तो एक आध बात इंग्लिश में कहेगा, वो ऐसा होता अक्सर। तो अभी अंग्रेजी के सर थे और उन्होंने जो है आखिरी में ये कहा कि तुम लोग जो है वो इनके पीछे पीछे भाग रहा है, अपना एम टेक कंप्लीट कर लेगा तो ये और तुम्हारे पीछे गाड़ी ये सब भागेंगे, गेट आउट, बाप के पैसे को बर्बाद मत करो यहां पर। ऐसा आज अगर ऐसा किसी स्टूडेंट से कह दे कोई टीचर तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये हमें आज भी याद आता है कि उनको धन्यवाद देने का मन होता है कि ऐसे प्रोफेसर्स जिन्होंने कि अपने स्टूडेंट का इतना ध्यान रखा, उन्हें नहीं तो किसको क्या चिंता, अपने पैसे लिए पढ़ा दिया और तुम पढ़ो तो न पढ़ो तो, बेईमान हो तो तुम अपने कुछ भी करो, लेकिन याद आ जाता कई बार कि देखो उस दिन के बाद का दिन कि हम लोग कहीं बाहर घूमते घूमते कभी उनको नजर नहीं, प्री पीरियड हुआ तो हम लोग कहते थे कि धसो धसो, मतलब लाइब्रेरी में घुस जाओ, चुपचाप वहीं बैठे रहना, भले बात करना हो तो वहीं बैठ के करना, बाहर कहीं साहब ने देख लिया बात करते हुए। डिपार्टमेंट की सीढ़ियां एक बार तेजी से चढ़ गए, उस पर पट्टी लगी हुई थी सीढ़ियों पर उसकी स्टील की या कि एल्यूमिनियम की, उस पर जोर से अगर पैर रखोगे तो खट खट की आवाज आएगी, तो हम लोग चढ़ते चले जा रहे थे उस पर और भूल गए, एकदम ध्यान नहीं रहा और जोर जोर से आवाज आने लगी, तो वहां से साहब आ रहे थे, उन्होंने मालूम क्या, आई ऑफ यू आर एमटेक स्टूडेंट, आई डोंट बिलीव, तुम सब एमटेक पढ़ते हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बात हमेशा के लिए शर्मिंदा करने वाली कि तुम्हें तो शालीनता से जाना चाहिए, ऐसी शालीनता आज कोई सिखाता है स्टूडेंट्स को? तो ऐसा याद आ जाता कई बार, तो लोग जो है वो मैं से पूछ लेते हैं कि कुछ बातें बताइएगा, बहुत सारी बातें हैं, पर मैं यही कहूंगा कि हम वहां विद्या अध्ययन करने जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं या कि शो करने जाते हैं, आडंबर करने जाते हैं, अपने कपड़े दिखाने जाते हैं, अपनी कार और स्कूटर दिखाने जाते हैं या कि लोगों से मिलने जाते हैं, नहीं, हम तो वहां ज्ञान हासिल करने, विद्या हासिल, और विद्या का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है, ना पहनाव से कोई संबंध है विद्या का और ना और दूसरी बातों से है। हमें आज के लोगों को, युवाओं को इस तरह कुछ करना चाहिए, बस इतने प्रश्न तो बच गए भैया, यही इतना ही हो पाए। नए जमाने के साथ और धर्म के साथ कैसे सामंजस्य बनाएं? मतलब नए जमाने का मतलब यह है कि बिल्कुल अधार्मिक नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज जो कुछ भी हमारे पास विज्ञान की उपलब्धियां हैं, क्यों ना हम उनका लाभ उठा करके और अपने धर्म को भी साथ में करें। मुझे याद आता है कि पहले आधे आधे घंटे वो चूल्हा फूंकने में लग जाता था, सिगड़ी जलाने में लग जाता था, मसाला पीसने की तैयारी दो दो दिन से करना पड़ती थी, जब जाकर के वो मसाले का नमक बनता था, वो मसाला पीसता था, भाई को हम देखते रहते थे कि अब वो तैयारी में लगी हैं, अब उनको आज मसाला ऊपर से कर दोपहर में 2-3 घंटा है, तो ऐसा होता था। इसके बाद भी समय रह जाता था, और आज अपने पास तो 5 मिनट में बटन दबाया, मिक्सी में जो है पिसके मसाला तैयार हो गया, उधर पांच दस मिनट में आटा पिसके आ गया, इधर पांच मिनट में बर्नर चालू किया, गैस चालू किया और सब चीज, ये जितना समय जो पहले एक घंटे लगता था उसमें से पांच मिनट में हो गया, विज्ञान ने इतना सुलभ कर दिया, वो 55 मिनट कहां चले गए? अगर हम उन सबको बचा लें और उस सबको धर्म ध्यान में लगा लें तो कोई वजह नहीं है कि आज के समय में और हम धर्म ध्यान ना कर सकें, हम जो है अपने आप ही नहीं करना चाहते और नए जमाने को दोष देते हैं। भैया ऐसा नहीं है, नया जमाना है, उसमें भी हम रह करके और अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। इन भौतिक सुविधाओं का पहले तो पांव पांव चल के और सब्जी खरीदने जाना पड़ता था, तो फिर से पांच मिनट के अंदर वहां तक हूं गाड़ी से लेकर कितना टाइम बच रहा है, कितना इजी हो गया, मैं तो सोचता हूं ये सब चीजें, लेकिन उसका अपन लाभ नहीं उठा रहे। चुल्लक दीक्षा के समय की कुछ अविस्मरणीय घटना सुनाए, आपके वैराग्य के पहले सांसारिक जीवन में क्या एम था? देखो भैया, चुल्लक दीक्षा के समय मेरी चुल्लक दीक्षा तो ऐसे ही हुई थी कि मैंने 9 जनवरी को कॉलेज अटेंड की थी और 10 तारीख को दीक्षाएं देखने आचार्य जी के चरणों में आया था और उस समय ऐसे ही निवेदन किया था कि अब जो है आपकी कृपा हो जाए तो मुझे वापिस ना जाना पड़े। तो कहने लगा, सचमुच? मैंने कहा बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं, क्या वापिस जाने के लिए नहीं आया हूं, आपकी कृपा पर हो जाए, आप संघ में शामिल कर ले, मैं सोचता था शामिल कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, चुल्लक गुल्लक बना देंगे, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, ईमानदारी से कोई पूछे तो वो तो आचार्य जी की कृपा कि उन्होंने देखा कि अगर इनको हम ऐसे ब्रह्मचारी बना लेंगे तो कल के दिन कोई ना कोई सब पूरा सागर आके उठा के ले जाएगा, कौन मानने वाला है, लेकिन इनके हाथ में पिछी का मंडल आ जाएगा तो फिर किसी का वश नहीं चलेगा। और शायद यही बात थी कि उन्होंने जब माता पिता, बड़ी दीदी भी थी साथ में और पिताजी भी थे, उन्होंने मना किया कि अभी ऐसे कैसे, आपने इनकी परीक्षा कर ली है? तो उन्होंने कहा मैंने कर ली, 3 साल से देख रहा हूं ऐसा करके, और तुरंत जो है और 8:30 पे पहुंचे थे और 15 मिनट के बाद आचार्य जी बोले कि क्या आगे बढ़ोगे? मैं समझी नहीं कि क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आगे बढ़ने का मायना क्या? मैंने कहा हाँ, तो केस चेंज कर लोगे? मैंने कहा हाँ, वो जो कहते जाए, मैंने अपने हाथ से, मैंने कहा हाँ, अब जानते वानते कुछ नहीं थे उस समय, बैठ गए और योग सागर जी महाराज ने 8:30 से केस लंच शुरू हुआ था, 12 बज गए थे पूरे, 12 बजे तक केस लंच हुआ, उसके बाद एक ब्रह्मचारी जी के कपड़े मिल गए थे, सुबह पहन लिए, आचार्य जी के साथ में वहीं बैठ गए, जो सामायिक में सामायिक का करी माला फेरी जी को तो अपने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे हम, आपका समझ रहे थे कि बहुत धर्म के मामले में तो मामला जीरो था। हाँ, अकेले जीव अजीब की परिभाषा मालूम थी और ज्यादा नहीं ज्ञान था। और फिर जो है 1:30-2 बजे कहना चलो मंच पर, 1:30 बजे, 1.5 घंटे हम ब्रह्मचारी के कपड़े पहने, 1:30 बजे जाकर के हमने कहा कि चढ़ाओ मरीजल मुनि बनने के लिए निवेदन करो, हमने चढ़ा दिया कि मुनि बनने का निवेदन करता हूं। उन्होंने कहा अभी नहीं मुनि, अभी तो चुल्लक बनाऊंगा। हमने कहा ठीक, बड़ा निवेदन करवाते हैं उसमें से फिर देते छोटे ही हैं। फिर मुझे याद है कि बोलने के लिए कहा गया कि बोलो कुछ, तब मुझे याद है भक्तांबर का अल्पश्रुतम शुद्ध बताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान्माम, आपकी भक्ति बस हे आचार्य महाराज आपके चरणों में आया हूं, बाकी मैं कुछ जानता नहीं हूं, इतने बड़े श्रुतवान लोगों के बीच में हंसी का पात्री होऊंगा, पर सबसे क्षमा याचना करता हूं, सबको क्षमा करता हूं, और आके बैठ गया था और दीक्षा हो गई थी और कुछ याद नहीं। लेकिन आचार्य जी का आशीर्वाद कि शाम को, ये तक तो ख्याल नहीं आया, आज तक नहीं ख्याल आया उस दिन के बाद कि शाम को मैं अंतव करता था या 3 दफे एक दिन पहले तक खाता था, शाम को प्रतिक्रमण करना है उसी दिन 10 तारीख को, 9 के शाम को तो 3 दफे भोजन किया था, 10 तारीख की शाम को ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि मुझे शाम को ये ख्याल नहीं आ रहा है कि मुझे अंतव करनी है और मुझे ये याद आ रहा है कि प्रतिक्रमण कहां करना है, कौन महाराज जी करवा देंगे, आता तो है ही नहीं। इसके मायने मुझे लगता है कि वो जो संस्कार है दीक्षा के, वो ऐसे नहीं है आर्डिनरी, उसमें स्पर्श हुआ है, जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार हैं, वो पूरे जीवन को बदल देते हैं। अकेला नाम नहीं बदलता, ड्रेस बदलती, नाम बदलता, इतना नहीं, चेतना बदल जाती है। जैसे कि अपन कहते कि सगाई हो गई स्वभाव मोड़ी को, वो इधर दिखाने लगा तो रेत जरूर है, नहीं बड़े लोग नहीं कहते ऐसा, पता नहीं आप लोग कहते कि नहीं कहते, वैराग्य
से पहले मैं कोई बहुत महापुरुष तो हूं नहीं जिसके कि वैराग्य का कोई निमित्त मिले, है कि नहीं। वो तो तीर्थंकरों को निमित्त मिलता है, मुझे तो आचार्य के दर्शन से ही मन में ये था, दो ही बातें मन में थी कि आचार्य के चरणों की सेवा करूंगा और जैन धर्म को और विज्ञान की भाषा में अगर संभव हुआ तो थोड़ा बहुत समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे जीवन के दो ही उद्देश्य आज भी आत्मकल्याण, आत्मकल्याण तो भैया सब बातें कहवे की सुनवे की हैं, अच्छी लगत है। आत्मकल्याण इतनी आसान बात है का जो आप चर्चा करते हैं? आत्मकल्याण तो अभी अपने जीवन को ठीक ठीक दिशा देना ही आत्मकल्याण की तरफ जाना है, बाकी तो आत्मकल्याण तो बहुत मुश्किल चीज है। अपने परिणाम ही संभले रहने पूरे जीवन इतने ही बहुत है, सच्चे देवगुरु शास की श्रद्धा बनी रहवे और अपनी कषायें न जागृत होवे, विषय वासना की तरफ दृष्टि न जावे, भैया इतने ही उद्यम करना पर्याप्त है, इससे ज्यादा वैराग वैराग हमें नहीं है। सो तो बहुत राग बहुत जहां जा सो तंग की हो जात, आपको नहीं लगा था हम आपके नहीं बताओ, लेकिन जब यहां से बाहर निकलेंगे तो फिर उसके बाद कोई किसी का नहीं है, लेकिन जब तक जहां रहो वहां पर प्रेम से रहो, यही इससे ज्यादा और कोई संसार में नहीं है। हम तो इसी को वैराग मानते, विषय कषाय से बचे रहना यही पर्याप्त है, इससे ज्यादा तो और क्या। दुख छोटा बड़ा होता है क्योंकि हमने तो यही समझा कि दुख तो दुख है, जैसे चोरी तो चोरी है, चाहे एक पैसे की हो चाहे एक लाख की हो, इसमें आपकी क्या राय है बताइएगा, आप थोड़ा समझाइएगा। ठीक है, देखो ऐसा है, दुख तो दुख ही है लेकिन उसकी डिग्री है। जैसे दुख के चार भेद कर दिए गए हैं, एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है, एक आकस्मिक दुख है और एक जो है प्रकृतिकृत दुख है। बैठे हुए थे बाहर, ओले गिरने लगे, ठंडी हवा चलने लगी, गर्म लू लगने लगी, अब ये दुख, ये हमने बुलाया नहीं है, प्रकृति प्रदत्त दुख है। उसमें हम कितना महसूस करेंगे ये हम पे निर्भर करता है, हमारी सहन शक्ति ज्यादा होगी तो वो दुख कम मालूम पड़ेगा है, और सहन शक्ति कम होगी तो वो दुख ज्यादा मालूम पड़ेगा। शरीर में होने वाले दुख को अपन कष्ट कहते हैं और मन में होने वाले दुख को पीड़ा कहते हैं, वेदना कहते हैं। मानसिक पीड़ा अलग होती है, कोई शरीर से सब स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसका दुख अलग है। दुख की भी वैरायटी है, इसलिए तो लिखा कि दुख शोक ताप आक्रंदन, ये सब कितने प्रकार के भेद हैं, सब दुख के ही भेद हैं, अलग अलग डिग्री का फर्क है, इंटेंसिटी का तीव्रता का फर्क है, ये फर्क तो किया है पर दुख तो दुख ही है, मुझे इसमें मानने में कोई आपत्ति नहीं। सांसारिक दुख और सांसारिक सुख, इंद्रियजन्य सुख और इंद्रियजन्य दुख, असाता के उदय में सब कुछ जो है दुख रूप होता है, साता के उदय में जो है वो हमें इंद्रिय की सामग्री मिलने पर सुख का अनुभव होता है, इतना तो सीधा है साहब। जैसे कर्म, कर्म की दृष्टि से तो भैया पाप और पुण्य सब कर्म ही है, मानो आप बताओ कि ऐसो ऐसो अकेले माने से काम चल जाए अपनो, नहीं अपन को थोड़ा ये भी विचार करना पड़ेगा कि नहीं पाप से तो पुण्य भला है, है? तो देवों के मानसिक दुख है, नारकियों के शारीरिक दुख है, और अपन के लिए मानसिक शारीरिक और आकस्मिक और प्रकृति का सब प्रकार का दुख कौन प्रकार से आएगा इस अपेक्षा से। जैसे सम्यक दर्शन एक ही है, दर्शन मोहिनी के छह छह उपसम उपसम से एक प्रकार का है, उत्पत्ति की अपेक्षा दो प्रकार का है, कर्मों के छह छह उपसम की अपेक्षा तीन प्रकार का है, कहते जितने जीव है संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार का, अब बताओ, और कैवियों को तो सम्यक दर्शन एक ही है। इसी तरह से भैया दुख तो छोटा बड़ा हमारी अपनी कह लेते हैं कि थोड़ा दुख है या ज्यादा दुख है, ये कथन का या कि महसूस करने का अनुभव करने का, पर दुख तो दुख है। एक पैसे की चोरी और एक लाख की चोरी, इंटेंसिटी का फर्क है। हाँ, हालांकि चोरी तो चोरी है लेकिन उसमें तीव्रता और मंदता, कर्म का बंध तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विशेषा, सूत्र जी का सूत्र पढ़ो, तीव्र भाव से किया गया, मंद भाव से किया गया, ज्ञात भाव से अज्ञान पूर्वक कर लिया है, अधिकरण कैसा है, जीव अधिकरण है या अजीव अधिकरण है, वैसा कर्म का बंध होगा। इसलिए कर्म के बंध की अपेक्षा से जो है दुख को छोटा बड़ा कह देते हैं।
समझाते कि तो तुम्हारे जी कौन दुख है बताओ, ऐसा नहीं समझाते। वहां क्या कहना चाह रहे कि तुम्हारा दुख कौन सा बड़ो है, जो तो देखो इनको कितना बड़ो दुख है और उनने फिर भी सहन कर लो, तो का दुख बड़ो और छोटो हो होगा? नहीं, दुख तो दुख ही है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। हम लोग अल्प बहुत के बिना तो काम ही नहीं चल सकता बिना उसके। तो इस अपेक्षा से इसको ऐसा समझिएगा भैया, और कोई विशेष उसमें फर्क नहीं है, पीछे भी है क्या? ऐसे कौन से परिणाम जीव करता है जिससे साथ में नरक का बंद कर लेता है? भैया श्रैणिक महाराज का उदाहरण है कि श्रैणिक ने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव किया और सर्प को जो है मार दिया, और मार करके वहां ये जो एक तीव्र क्रूरता के परिणाम है, कृष्ण लेश्या के परिणाम कहलाते हैं, ऐसे परिणामों से, और आयुबंध का समय आ गया, उसी समय आयु बंधेगी, तो नरक के साथ में नरक की आयु बंधी उन्होंने बांध ली थी, साथ में नरक की। वज्रवृषभ नाराज सहनन होना चाहिए, ये ध्यान रखना उसके साथ, क्योंकि कषाय की तीव्रता की लाने शरीर को बल भी चाहने। हाँ, कमजोर आदमी ज्यादा कषाय नहीं कर सकता, सो ज्यादा नीचे नरक में नहीं जाएगा। बहने लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगी तो छठ में नरक तक जाएंगी। सिंह जो है जाएगा तो पांच में नरक से ज्यादा नहीं जा सकता, बताओ, इतना क्रूर है सिंह, लेकिन मरे तो पांच में नरक से नीचे नहीं जा सकता, कितना भी क्रूरता करे तो। और मनुष्य ऐसा है कि सात में नरक तक चलो जाते। हाँ, और सो ऐसा भी है, और सिंह जो है ऊपर भी कमती जा पाएगा, मनुष्य जो है ऊपर भी मोक्ष तक जा सकता है। जिन जीवों के मोक्ष का उपाय है उनके साथ में नरक जाने का भी उपाय है, दोनों बातें हैं इस तरह से। तो ऐसा इसको समझना चाहिए।